मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय सज्जनों और नासिक के सभी अग्रगणी मित्रों, मैं आजादी बचाओ आंदोलन के काम में लगा हुआ हूं। ये काम मैं कोई बहुत खुशी से नहीं कर रहा हूं। मेरे दिल में कुछ दर्द है इस देश की हालत को देखकर। ये उसका परिणाम है, आजादी बचाओ आंदोलन। और ये दर्द क्या है? दर्द ये है कि हिंदुस्तान की जो हालत है आज के समय में, माने आजादी के 50 साल के बाद भी, वो इतनी दर्दनीय है, इतनी शोचकारक है, परेशान करने वाली है कि जो किसी भी संवेदनशील आदमी को अंदर से हिला सकती है। मुझे जो सबसे बड़ा दुख है इस देश की हालत के बारे में, वो दुख इस बात का है कि ये देश आजाद जरूर हुआ है, और एक तरफ हम आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती की बात भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई में ये देश जितना गुलाम अंग्रेजों के जमाने में था उतना ही आज भी है। बस फर्क इतना है, मैं उसको ऐसे कहता हूं कि आजादी के पहले इस देश में गोरे अंग्रेजों का शासन चलता था, और आजादी के बाद इस देश में काले अंग्रेजों का शासन चल रहा है। माने जो लोग इस देश पर शासन कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, लेकिन आत्मा उन सबकी अंग्रेजियत वाली है। और मुझे दुख एक दूसरी बात का और है कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था इस देश की आजादी का, वो सपना कहीं से भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता। इस देश की आजादी के लिए जो क्रांतिकारी लड़ रहे थे, जो आंदोलन में लगे हुए थे, उन क्रांतिकारियों के मन के सपने क्या थे? तो सभी लोग ऐसा मानते थे कि जब आजादी मिल जाएगी तो इस देश में राम राज्य आ जाएगा, अंग्रेजों की त्रासवादी सरकार से मुक्ति मिल जाएगी। और जब राम राज्य की कल्पना होती थी उन क्रांतिकारियों के मन में, दिलों में, तो वो क्रांतिकारी अक्सर दो तीन बातें कहा करते थे। एक बात तो ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस देश में कोई भी गरीब नहीं होगा। दूसरी बात ये कही जाती थी कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस देश में कोई बेरोजगार नहीं होगा। तो यहां से गरीबी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात ये कही जाती थी कि अंग्रेजों की सरकार हिंदुस्तान की जनता को जिस तरह से लूटती है, जिस तरह से परेशान करती है, आजादी मिलने के बाद जो सरकारें बनेंगी वो हिंदुस्तान की जनता को नहीं लूटेंगी और वो उस देश की जनता को परेशान नहीं करेंगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस देश में कही जाती थी, जिसको करीब करीब हर बड़ा क्रांतिकारी नेता कहता था, गांधी जी भी उसको कहा करते थे। एक बार गांधी जी से पूछा गया था कि आजादी के बाद के हिंदुस्तान के बारे में आपका सपना क्या है। एक विदेशी पत्रकार था, उसने पूछा था बापू से कि जब आजादी मिल जाएगी भारत को तो कैसा हिंदुस्तान का कल्पना, कैसी हिंदुस्तान की कल्पना आपके मन में है। तो गांधी जी ने एक ही लाइन में जवाब दिया था उसका कि आजादी के बाद के भारत में अगर अंग्रेज चाहेंगे तो रह सकते हैं, मुझे अंग्रेजों से कोई नफरत नहीं है, अंग्रेज चाहेंगे तो हिंदुस्तान के मेहमान बनकर रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियत नहीं रहेगी। तो उस पत्रकार ने पूछा कि बापू ये अंग्रेजियत से आपका मतलब क्या है। तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजियत का माने है हिंदुस्तान की वो सारी की सारी व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई है। उदाहरण के लिए अंग्रेजों की चलाई हुई शिक्षण पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे, अंग्रेजों की चलाई हुई न्याय पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे, अंग्रेजों की चलाई हुई शासन पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे, अंग्रेजों की चलाई हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। तो वो कहा करते थे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे और स्वराज्य आ जाएगा तो हिंदुस्तान में ये कोई भी व्यवस्था नहीं चलेगी जो अंग्रेजों ने चलाई है, और आजादी के बाद हम इस देश में एक स्वदेशी की व्यवस्था चलाएंगे। गांधी जी के राम राज्य के सपने में सबसे मूल बात यही थी। और उन्होंने एक बार और कह दिया था एक और दूसरे पत्रकार के जवाब में कि ये राम राज्य कैसा होगा। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे राम राज्य की कल्पना है जिसमें 11 व्रत देश की नीतियों के रूप में चलाए जाएंगे। तो वो 11 व्रत कौन से हैं जो उन्होंने दिए इस देश के लिए? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असंग्रह और ऐसे ऐसे 11 व्रत हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण व्रत है स्वदेशी, और वो कहते थे कि स्वदेशी के बिना राम राज्य हो नहीं सकता। ऐसी ही कल्पना गांधी जी जैसे बहुत सारे दूसरे नेताओं की भी थी। जैसे कभी कभी मैं एक दूसरा उदाहरण और देता हूं कि श्री सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी और उसका ऑफिस हिंदुस्तान में नहीं था, हिंदुस्तान के बाहर था, और वो एक अपने तरीके से क्रांतिकारी तरीके से हिंदुस्तान को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनका भी एक बहुत ऐतिहासिक भाषण रेडियो पर टेलीकास्ट हुआ था जो उन्होंने रंगून से दिया था। उस भाषण में उन्होंने भी यही कहा था, माने गांधी जी सत्य अहिंसा सत्याग्रह के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस वो सारे तरीके अपनाना चाहते थे जिससे अंग्रेजों को मारकर भगाया जा सके। फौज भी बनानी है, आक्रमण भी करना है, मार भी देना है अंग्रेजों को, कोई सिपाही मिल जाएगा तो उसको नमस्ते नहीं कर लेना है। तो दो अलग अलग एक्सट्रीम के नेता थे इस देश में। एक बाजू में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तांत्या टोपे और ये सब थे, और दूसरे बाजू में महात्मा गांधी और ऐसे तमाम दूसरे लोग भी थे, लेकिन सपनों में कोई अंतर नहीं था। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जो सपना महात्मा गांधी का था हिंदुस्तान के बारे में वही सपना सुभाष चंद्र बोस का भी था, और वो भी यही कहा करते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस हिंदुस्तान में हमारा सब कुछ जो है हिंदुस्तानी तरीके से चलेगा, अंग्रेजों के तरीके से हम कुछ भी नहीं चलाने वाले इस देश में, अंग्रेजों की कोई भी नीति इस देश में नहीं चलेगी। तो उनके सपने, गांधी के सपने, हिंदुस्तान के उन करोड़ों क्रांतिकारियों के सपने जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, वो कमोबेश एक जैसे थे। एक दो डिग्री का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं था उन सपनों में। मुझे जो दर्द है वो इस बात का है कि आज आजादी के 50 साल में उन सपनों का क्या हुआ, क्या हुआ इस देश में, कौन सा ऐसा ग्रहण लग गया इस देश पर कि ऐसा अच्छा देश जिसके बारे में सारी दुनिया में कहा जाता था कि जगत गुरु है, वो देश आज गड्ढे में गिरने की तैयारी पर है। क्या हो गया है ऐसा, कौन सी प्रॉब्लम है? मैं कभी कभी बुजुर्गों से बात करता हूं सीखने के लिए। मेरे घर में मेरी एक दादी मां है जो आजादी की लड़ाई में शामिल थी, 1942 की लड़ाई में शामिल थी, शायद उसी के संस्कार मुझे मिले हैं। तो कभी कभी मैं जब उसके पास जाता हूं, उससे बातें करता हूं, तो पूछता हूं कि आप लोगों ने जब अपनी जान को हथेली पर लेकर 42 की लड़त में घर छोड़कर क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने का संकल्प लिया था, तो कौन सा सपना था आपके मन का? तो वो कहती है कि सपने तो हमारे बहुत ऊंचे थे। तो मैं उससे पूछता हूं कि तुमने तो सीधे देखा है, मैंने तो देखा नहीं, मैंने सिर्फ सुना है, उन सपनों के बारे में आपको क्या लगता है? तो वो कहती है कि अब मुझे शर्म आती है कि हमने ऐसे देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी है। इससे ज्यादा अफसोस का कोई दूसरा वक्तव्य हो नहीं सकता एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसी महिला का जो खुद शामिल थी 42 की लड़ाई में। ऐसे और भी बुजुर्गों से मैं मिलता हूं, सब लोग एक ही बात कहते हैं, कभी कभी तो एक्सट्रीम का जवाब मुझे मिलता। मैं तो पूरे देश में घूमता हूं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी पूछता हूं, तो अक्सर बुजुर्ग लोगों की प्रतिक्रियाएं जो मुझे मिलती हैं तो यहां तक मिलती हैं कि राजीव, अंग्रेजों का राज्य आज से ज्यादा अच्छा था। ये भी लोग कह देते हैं मुझको कई बार। तो मैं उनसे पूछ लेता हूं कि क्या आपके मन की गुलामी अभी तक गई नहीं है? जो आप कहते हैं कि अंग्रेजों का राज्य आज से ज्यादा अच्छा था, तो वो कहते हैं कि ये मन की गुलामी नहीं है, ये हम अपने दर्द से कह रहे हैं, खुशी से नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजों का राज्य आज के राज्य से ज्यादा अच्छा था। और अक्सर मैं पूछता हूं कि उदाहरण के लिए बताइए कौन सी ऐसी चीज थी, तो कहते हैं कम से कम सुरक्षा तो थी, कम से कम हमारे मन के संकल्प तो थे, कम से कम इतने मानसिक रूप से तो गुलाम नहीं हुए थे जो आज हैं। तो ऐसे जवाब अक्सर सारे देश में सुनने को मुझे मिलते हैं, तो दुख और बढ़ जाता है कि क्या सपने देखे थे इस देश के लिए। कभी कभी मेरे मन में ऐसे कल्पनाएं अजीबोगरीब आती रहती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, मान लीजिए वो सारे के सारे क्रांतिकारी जो कुर्बान हो गए इस देश की आजादी के लिए, स्वर्ग से कभी कल्पना करिए वापस आ जाएं इस जमीन पर और देखें इस देश को, कि देखें हमारे हिंदुस्तान को जिसको हम आजाद करवा के लाए थे और सौंप कर आए थे, उस देश का क्या हाल है। अगर मान लीजिए वो बाय द वे आ जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो, प्रभु की कृपा हो जाए, तो मैं आपसे बहुत दर्द से कह रहा हूं कि वो आज के हिंदुस्तान को देखकर शायद आत्महत्या करना पसंद करेंगे। ऐसा देश है जिसमें हम रह रहे हैं, ये कैसे हो गया है? हुआ है तो कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी, कहीं कोई चूक हुई होगी। कई बार क्या होता है कि जब खुशी बहुत ज्यादा होती है ना, तो अपनी गलतियां पता नहीं लगती। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा 1947 में, क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा थी सरकार बनाने की और सत्ता हासिल करने की, तो उसमें क्या क्या गलतियां हुई वो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। और आज ये लगता है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती जो आज हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने। क्या दुर्दशा है इस देश की। मेरे मन में जो दर्द है उसमें एक सबसे बड़ा दर्द ये है कि इस देश से अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई इस देश से। और अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में अंग्रेजियत और गहरी होती चली गई है। माने जितनी अंग्रेजियत इस देश में आजादी के पहले नहीं थी, उससे कई गुना ज्यादा अंग्रेजियत इस समय देश में हर तरफ दिखाई देती है, जीवन के हर क्षेत्र में, वो चाहे राजनीति हो, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, वो चाहे समाज की व्यवस्थाएं हो, वो चाहे हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हो, हर जगह वो अंग्रेजियत के दर्शन मुझे होते हैं, जिस अंग्रेजियत को भगाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां कर दी अपने जीवन की। वो अंग्रेजियत क्या है उसको समझना चाहिए। और गलती क्या हुई है, गलती हुई है गांधी जी ने जो देखा था उसके ठीक उल्टा हुआ है। गांधी ने तो देखा था कि अंग्रेज चाहें तो रहें, अंग्रेजियत चली जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा, अंग्रेजों को भेज दिया गया और अंग्रेजियत को इस देश में बाकायदा रखा गया। और ना सिर्फ रखा गया, इस पर ताली बजाने की बात नहीं है, यह दुख की बात है जो मैं कह रहा हूं। और आप लोग इतना तो समझिए कि कब ताली बजानी चाहिए कब नहीं बजानी चाहिए। तो दुख जो है वो ये है कि अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजियत तो गहरी होती चली जा रही है लगातार इस देश में। और इसलिए मैं कहता हूं कि क्या कोई आजादी आ गई है इस देश में, जिस अंग्रेजियत से आजाद होने की हमारी कल्पना थी, हमारे संकल्प थे, उस अंग्रेजियत से कहीं हम आजाद दिखाई देते हैं? उदाहरण के लिए, अंग्रेजों के जमाने में इस देश में मानसिक गुलामी मानी जाती थी कि ज्यादा थी। और वो मानसिक गुलामी में क्या होता था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार इतने अत्याचार करती थी, इतना लोगों के ऊपर दुष्कर्म करती थी, इतना लोगों को प्रताड़ित करती थी, फिर भी अंग्रेजी सरकार के जो बड़े अधिकारी थे उनका हिंदुस्तान में स्वागत होता था। जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि सन 1911 में अंग्रेजों का राजा आया था इस देश में, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, अंग्रेजी में उसको जॉर्ज फिफ्थ भी कहते हैं। तो जॉर्ज पंचम आया था इस देश में, हिंदुस्तानियों में क्रांतिकारियों का एक समूह था जो मानता था कि जॉर्ज पंचम को इस देश में नहीं आना चाहिए, तो वो समूह उसका विरोध करता था। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का भी एक समूह था जो जॉर्ज पंचम का स्वागत करता था। तो जॉर्ज पंचम का स्वागत करने वाला समूह कौन सा था? जॉर्ज पंचम का स्वागत करने वाला समूह था जिनको अंग्रेजों की सरकार से कोई ना कोई मुनाफा मिलता था, जिनको अंग्रेजों की सरकार से कोई ना कोई सुविधा मिलती थी, जो अंग्रेजों की सरकार के पोषित किए गए तंत्र से अपने आप को जोड़कर रखते थे। तो ऐसा एक वर्ग था इस देश में, या हम उसको बहुत ब्लंट भाषा में कहें तो अंग्रेजों का चाटुकार वर्ग था इस देश में, साइकोफेंट थे कुछ अंग्रेजों के। तो जो अंग्रेजों का चाटुकार वर्ग था वो अंग्रेजों के स्वागत में लगा रहता था, अंग्रेजों के गुणगान में लगा रहता था, ये अक्सर होता था। तो 1911 के साल में जब जॉर्ज पंचम आया इस देश में, तो जो लोग अंग्रेजों के साइकोफेंट माने जाते थे, चाटुकार माने जाते थे, उन लोगों ने जॉर्ज पंचम का खूब जबरदस्त तरीके से स्वागत किया था। उस समय मैं आपको याद दिलाऊं, श्री स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने यह कहा था कि काश ये देश आजाद होता तो हमको यह दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्दिन क्या था कि जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तानी लोग ही खड़े हुए हैं, इसको तिलक जी दुर्दिन मानते थे कि यह दुर्दिन तो ना देखना पड़ता अगर हम आजाद होते तो। तो इतनी बड़ी बात जो उन्होंने कही ये कोई छोटी बात नहीं थी कि काश हम आजाद होते तो ये दुर्दिन तो ना देखना पड़ता जो हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों का स्वागत किया जा रहा है, और उसका स्वागत किया जा रहा है जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, जो हमको मारता है, जो हमको पीटता है, जो हमको लूटता है, ऐसे राजा का स्वागत होना चाहिए या बहिष्कार होना चाहिए? तो उनके ग्रुप की तरफ से उन्होंने कोशिश की थी और बहिष्कार का कॉल दिया था कि जॉर्ज पंचम का हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन चूंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की व्यवस्था थी इस देश में, तो अंग्रेजों का शासन और अंग्रेजों की व्यवस्था के कारण देश के लोग मजबूर थे कि सरकार अंग्रेजों की है, तो अंग्रेजों की सरकार है तो वो जो फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा देश के लोगों को। तो अंग्रेजों की सरकार ने यह फैसला कर लिया था कि जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान में स्वागत होना चाहिए। तो मजबूरी थी देश के लोगों की, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो वो मजबूरी मुझे समझ में आती है कि 1911 के साल में चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान में आना एक बड़ी दुर्घटना थी, और तिलक साहब के शब्दों में कि ये दुर्दिन न देखना पड़ता अगर हम आजाद होते। ये बात एक बाजू में थोड़ी देर को रख दें, फिर हम कल्पना करें कि अभी इस साल आजादी के 50वें साल में अक्टूबर के महीने में 12 तारीख को जब ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान में आई तो क्या सिर पीटें अपना हम? क्योंकि अभी तो यह बात समझ में नहीं आती, हम तो 1911 में गुलाम थे, हम तो मजबूर थे, तो चूंकि 1911 में हम गुलाम थे मजबूर थे इसलिए जॉर्ज पंचम का स्वागत करना हमारी मजबूरी थी। अब 1997 में हम आजाद हैं, हिंदुस्तान आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है, 50 साल हो गए हैं, गुलामी जा चुकी है यहां से, अंग्रेज जा चुके हैं, तो आजादी के 50 साल में रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने की कौन सी मजबूरी है हमारी? कौन सी मजबूरी है? यह समझ में नहीं आता मुझको। और यह मजबूरी किसी एक दो संस्था की तरफ से दिखाई गई होती, किसी व्यक्तिगत स्तर पर किसी ने दिखाई होती तो समझ में आता है, लेकिन यह मजबूरी सरकार ने दिखाई हमारी, और उसको हम कहते हैं कि यह हिंदुस्तानी सरकार है, भारत की सरकार है। तो भारत की सरकार की वो कौन सी मजबूरी है कि आज 50 साल के बाद भी हमें ब्रिटेन की रानी का वैसे ही स्वागत करना पड़ता है जैसे हम गुलामी के दिनों में किया करते थे? ये कौन सी मजबूरी है? और अगर कोई मजबूरी है तो उसे समझना चाहिए हमको, क्योंकि यह मजबूरी कोई भारत सरकार की नहीं है, यह पूरे राष्ट्र की मजबूरी है। जब जॉर्ज पंचम आया था 1911 में तो उसका 21 तोपों से स्वागत किया गया था, क्योंकि हम गुलाम थे। अब आजादी के 50 साल में जब रानी एलिजाबेथ आई तो उसका भी 21 तोपों से स्वागत किया गया, क्योंकि हम आजाद हैं। यह तर्क कुछ समझ में आता? जब जॉर्ज पंचम आया था इस देश में तो उसके पास ना तो वीजा था ना पासपोर्ट था। क्यों नहीं था वीजा और पासपोर्ट? क्योंकि जॉर्ज पंचम राजा था इंग्लैंड का और हम थे गुलाम इंग्लैंड के, तो उसको हिंदुस्तान में आने के लिए ना तो वीजा की जरूरत थी ना पासपोर्ट की जरूरत थी। तो यह बात 1911 में समझ में आती है, लेकिन आज 1997 में जब महारानी आई इस देश में तो उसके पास भी वीजा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था। तो यह मजबूरी अब क्या है? उस समय की मजबूरी तो हमको समझ में आती है कि हम गुलाम हैं इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड का राजा हमारा राजा है, तो उसको लाने के लिए हिंदुस्तान में ना तो वीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट की जरूरत है। तो 1997 के साल में तो हम आजाद हैं और आजादी के 50 साल पूरे कर चुके हैं, तो अब ये कौन सी मजबूरी है कि रानी एलिजाबेथ को भी हिंदुस्तान में बुलाया गया बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के? अब क्या मजबूरी है? और मजबूरी इससे भी ऊपर चली गई। कम से कम 1911 में जो मजबूरी नहीं थी वो इस साल हमने देखी कि 1911 के साल में कम से कम ये दुर्घटना नहीं हुई थी कि किंग जॉर्ज का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान के किसी बड़े से बड़े नेता का अपमान किया गया हो, ये कम से कम नहीं हुआ था 1911 के साल में। लेकिन ये इस साल हो गया। क्या हो गया? कि रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का अपमान किया गया। और क्या अपमान किया गया? रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए भारत सरकार ने एक निमंत्रण पत्र छपवाया, इनविटेशन कार्ड। तो उस निमंत्रण पत्र में क्या हुआ कि रानी एलिजाबेथ का नाम ऊपर था और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे था। नियम हमारे देश में क्या है? नियम हमारे देश में यह है कि कोई भी बाहर का अतिथि आए, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, हमारे देश में हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। यह नियम है, संविधान में है। राष्ट्रपति से ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे बाहर का कितने ही बड़े से बड़ा राष्ट्रपति आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए। तो अगर यह नियम है तो हिंदुस्तान में वो कौन सी मजबूरी हुई जिससे रानी का नाम ऊपर गया और राष्ट्रपति का नाम नीचे गया? यह बात हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा अभी संवेदना जिंदा है मन में, और उसी दिन लगा जिस दिन वो निमंत्रण कार्ड मेरे हाथ में आया कि ये कोई बहुत बड़ा अपमान हुआ है इस देश का। राष्ट्रपति का अपमान ही नहीं है, सारे देश का अपमान है ये। तो भारत की सरकार पूरे देश का अपमान कैसे कर सकती है? ये मजबूरी समझ में आनी चाहिए। तो उस मजबूरी को समझने के लिए हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पत्रकारों को कहा कि देखिए, ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है आजादी के 50 साल में कि जब सरकार ने खुद राष्ट्रपति का अपमान किया है, और राष्ट्रपति का अपमान माने भारतीय संविधान का अपमान किया है, क्योंकि राष्ट्रपति और संविधान दो अलग चीजें नहीं है इस देश में। संविधान की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ऐसा माना जाता है। तो ना सिर्फ यह राष्ट्रपति का अपमान हुआ है बल्कि संविधान का अपमान हुआ है, और सिर्फ संविधान ही क्यों, पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है नियम और कानून के अनुसार। तो वह चूंकि राष्ट्र प्रमुख है तो उसका नाम हमेशा ऊपर जाना चाहिए, बाहर का कोई भी अतिथि आएगा उसका नाम उसके नीचे हो सकता है, ऊपर तो नहीं हो सकता। तो यह मजबूरी कैसे हो गई? जब इस बात पर पत्रकारों से बातचीत की तो कई पत्रकारों को लगा कि आपकी बात बहुत गंभीर है, तो जिनको लगा कि यह बात बहुत गंभीर है उन्होंने इस बात को फ्रंट पेज पर छापा, और जैसे ही दिल्ली के अखबारों में यह बात फ्रंट पेज पर छपी हंगामा मचा फिर। और हंगामा जब मचा तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा था कि राजीव भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से ऐसा हो गया हो? तो मैंने सहज रूप से कह दिया कि हो सकता है गलती, प्रिंटिंग प्रेस में यह निमंत्रण पत्र छपा हो, वहां के सब लोग पढ़े लिखे ही हो, अंग्रेजी अगर नहीं जानते होंगे तो नाम ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत स्वाभाविक है ये, तो जरूरी नहीं है। मैंने मान लिया, एक पत्रकार ने मुझे कहा सहज रूप से, मैंने भी मान लिया सहज रूप से कि ऐसा हो गया होगा। लेकिन शाम को भारत सरकार के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान दिया, और वो बयान क्या दिया कि ब्रिटेन की रानी का नाम निमंत्रण पत्र में ऊपर खूब समझ बूझ कर छापा गया है। तो इसके कुछ गहरे अर्थ हैं। जब सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट आ गया कि ब्रिटेन की रानी का नाम निमंत्रण पत्र पर ऊपर बहुत समझ बूझ कर छापा गया है और यह अखबार में छप गया, तब मुझे लगा कि जरूर कोई सीरियस बात है। तो मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वो वकील है, मैंने उससे कहा कि भाई तुमको क्या लगता है भारत सरकार ने यह जो कह दिया है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी है क्या? तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है इसकी लीगल वैलिडिटी हो सकता है, हो सकता है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी हो, यह उसने कहा मुझसे। तो मैंने कहा कि इस बात को अगर पता करना हो कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है तो क्या करना चाहिए? तो उसने यह कहा मुझसे कि तुमको कोशिश करके देखना चाहिए कि 1947 के साल में जो कुछ हुआ है वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो मैंने खुद उससे पूछा कि तुमको कुछ मालूम है ऐसी गड़बड़ के बारे में? तो उसने कहा मुझे एक बात तो मालूम है कि हिंदुस्तान की आजादी ऐसे ही नहीं आई है, हिंदुस्तान की आजादी बाकायदा एक कानून पारित करके आई है, उसको इतना तो मालूम था। और उसने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक कानून पारित किया गया था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पारित किया गया था तब उसके बाद हिंदुस्तान की आजादी आई है, ये उसने मुझसे कहा। तो उसने कहा हो सकता है इस बात की लीगल वैलिडिटी उस एक्ट में कहीं तुमको मिले। तो मैंने कहा मुझे वो देखना है, कैसे पता चलेगा? उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो मैंने कहा कहीं मिलेगा? तो उसने कहा कोशिश करो, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, कहीं मिल जाएगा। कोशिश करो, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है वहां मिल जाएगा। कोशिश हमने की लेकिन नहीं मिल पाया। तो फिर क्या किया हम लोगों ने, लंदन में हमारे कुछ दोस्त हैं उनकी मदद ली और उनसे कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स की बड़ी लाइब्रेरी है लंदन में पार्लियामेंट की, उसमें शायद ये पड़ा होगा, आप जरा उसकी फोटोकॉपी करा के हमको भेज दीजिए। तो वो आ गया वहां से, और वहां से जब आया तो सबसे पहले मैंने उस कानून को पढ़ना शुरू किया। जिस दिन मेरे हाथ में वो ड्राफ्ट आया उसी दिन मैंने सब काम छोड़कर उसको पढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने उस कानून का प्रस्तावना पढ़ा, प्रीएम्बल पढ़ा, उसी दिन मेरे दिल में एक खटका हो गया। प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है आफ्टर 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी टू डोमिनियन स्टेट्स। माने 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है उसकी प्रस्तावना में। तो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे तो भारत की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है फिर? क्योंकि डोमिनियन स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। अंग्रेजी की किसी भी डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए तो आपको एक ही मतलब मिलेगा। डोमिनियन स्टेट्स का माने होता है एक सुपर स्टेट के सबसर्बियंट एक छोटा स्टेट, माने एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य। तो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हैसियत एक डोमिनियन स्टेट्स की है तो इंडिपेंडेंस कहां आई है? और हम और पाकिस्तान अगर डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो किसके बने हैं? यूनाइटेड किंगडम के, माने ब्रिटेन के। तो हमारी आजादी की बात कोई कहता है अगर अब मुझको, तो मुझे लगता है कि कोई मुझे तमाचा मार रहा है। और उस दिन से मैंने यह सोचना शुरू किया है गंभीरता से कि मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी के फंक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो डोमिनियन स्टेट्स हैं, हम तो आज भी उनके सबसर्वियंट एक छोटे से राज्य हैं। और वो कानून पारित हुआ है 4 जुलाई 1947 को। तो ये तो सिर्फ प्रस्तावना की बात मैं कह रहा हूं, उस कानून में बहुत सारी दूसरी डिटेल बातें हैं। और वो डिटेल बातें क्या हैं? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में सबसे ज्यादा अगर जानकारी है कहीं तो वो इसी कानून में है। और उस कानून को पूरा पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे, कि मुझे पहली बार पता चला कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने बाकायदा कानून बनाकर किया है। माने अब तक तो मैं ये मानता था कि जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा होगा और अंग्रेजों ने पाकिस्तान दे दिया होगा, मेरे मन में यही कल्पना थी। और शायद बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, इतिहास में भी कुछ इसी तरह की बातें हमको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला वो कानून पढ़ने के बाद कि ऐसे ही नहीं हुआ है, बाकायदा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कानून पारित किया गया है। और वो कानून पारित किया गया है ब्रिटेन की संसद में, और कानून पारित हुआ है 4 जुलाई 1947 को। तो 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ है। कानून का टाइटल है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लेकिन उस कानून के आधार पर हम बने हैं डोमिनियन स्टेट्स। तो वो इंडिपेंडेंस एक्ट कहां है? वो तो हमको डोमिनियन स्टेट्स बनाने वाला एक कानून है। और हमको ये बात गंभीरता से सोचनी चाहिए। और उसी दिन मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न आया कि अगर हम डोमिनियन स्टेट्स हैं तो 50 साल से हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं। तो मैंने एक दूसरी बेवकूफी की एक्सरसाइज की, उसको मैं बेवकूफी कहता हूं। क्या किया मैंने? हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े नेताओं को चिट्ठियां लिखी और उसकी फोटोकॉपी उसके साथ भेजी, और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने मुझे रिएक्शन भेजे। कैसे रिएक्शन भेजे? हमको पहली बार पता चला है कि भारत का ये कानून की स्थिति के बारे में ये हैसियत है। माने जो बैठे हैं वहां पार्लियामेंट में, जिनको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए था इन सब चीजों का, वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के हमको पता चला है कि ऐसी बात है। अब क्या करूं? उस दिन मैं सिर पीटूं अपना, क्या करूं? जिनसे सारे देश को दिशा मिलनी चाहिए थी इसके बारे में, वो खुद कह रहे हैं कि हमको पहली बार पता चल रहा है। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पिछले कई सालों से मौन है इस बात पर। क्यों? क्यों नहीं इस देश में यह एक राजनीतिक बहस का सवाल बना कि हम अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेट्स क्यों बने? क्यों नहीं बना यह सवाल पिछले 50 साल की आजादी में? तो उसका एक ही जवाब है कि शायद इस देश के राजनीतिज्ञों को ना देश की चिंता है ना समाज की, वो अपनी मौज मस्ती के लिए शायद वहां जाके बैठते हैं। अदरवाइज किसी के दिल में दर्द होता तो ये एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन जाना चाहिए था। और मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि पार्लियामेंट में जितने लोग बैठते हैं उनमें से किसी को मालूम ही नहीं होगा, ये मैं भी मैं मानने को तैयार। हो सकता है मेजोरिटी लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम होगा यह मैं मानने को तैयार नहीं। और अगर ऐसी स्थिति यह है कि किसी को भी नहीं मालूम, तब तो हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम हम चला रहे हैं। और जिन लोगों को हम ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाने के लिए भेज रहे हैं उनके बारे में हमको गंभीरता से सोच लेना चाहिए फिर तो, अगर किसी को भी नहीं मालूम है ये। तो मैं मानता हूं कि किसी को तो मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा, 2-5 होंगे, 10 होंगे, लेकिन जिनको भी मालूम है उन्होंने इसको डिबेट का मुद्दा क्यों नहीं बनाया? और आजादी के 50 साल में आप ध्यान करिए, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन हुई थी, और ऐतिहासिक रात को उसी समय हुई थी 12 बजे, 14 अगस्त की रात को, इस साल 12 बजे वैसे ही सेशन किया था जैसे कभी हुआ होगा। उस समय यह बात उठनी चाहिए थी क्यों नहीं उठी फिर? क्यों नहीं किसी के मन में दर्द है इस बात को लेकर कि हम डोमिनियन स्टेट्स हैं अभी भी, और अगर हम उस कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स हैं यूनाइटेड किंगडम के, तो बात समझ में आती है कि फिर ब्रिटेन की महारानी हमारी भी महारानी है। और इसलिए यह भी सवाल समझ में आता है कि तब ब्रिटेन की महारानी का नाम ऊपर ही जाएगा, हमारे राष्ट्रपति का नाम उसके नीचे ही होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट नेशन हम हैं कहां, हम तो डोमिनियन स्टेट्स। और जिस दिन मुझे यह पता चला, उस दिन से हम लोगों की अंदर की परेशानी बहुत बढ़ गई है। और इससे भी ज्यादा दुख एक और बात का पता चला कि कुछ ऐसे भी नियम हैं जो इस देश में चलते हैं। जिस दिन यह पता चला, उसी के बाद एक दूसरी बात और पता चली कि मान लीजिए कभी इस देश में कोई ऐसी क्राइसिस की स्थिति पैदा हो जाए जिस क्राइसिस की स्थिति में हमारे पास संविधान में कोई प्रोविजन ना हो, हमारे पास कोई कानून ना हो उस स्थिति को सुधारने के लिए, कोई मान लीजिए स्थिति पैदा हो जाए एक्स वाई जेड, तो हमको क्या करना पड़ेगा? देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश रूल्स, देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश ट्रेडिशंस। माने अगर हमारे देश में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमको ब्रिटेन की परंपराओं का ही पालन करना पड़ेगा। यह भी बात है हमारे यहां। तो कैसे मान लें कि हम आजाद हो गए हैं? और मैं मानता हूं कि जरूर 50 साल की स्थिति में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब हमारे देश में उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोई प्रोविजन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में या नियम नहीं होगा, तो शायद ब्रिटेन की परंपराओं के आधार पर ही उनके फैसले किए गए होंगे, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ा है तो हमने खोजना शुरू किया है। हो सकता है हमको ऐसे कुछ उदाहरण भी मिल जाएं आने वाले समय में। इसलिए हम लोगों के दिल में दर्द है कि एक बाजू में हम कहें कि आजादी के 50 साल और दूसरे बाजू में देखें कि देश की हालत क्या है। हम तो उनके आज भी डोमिनियन स्टेट्स हैं। और उसी के बाद फिर कुछ बातें और पता चली हमको, कुछ बातें और पता चली जिनमें एक सबसे सीरियस बात है कि हिंदुस्तान की जो आजादी आई है वो आजादी नहीं आई है, बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए एग्रीमेंट हुआ है। अब इस बात को समझिए, आजादी लेने के लिए कभी कोई समझौता नहीं होता, और मैं मानता नहीं कि आजादी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए समझौता हो सकता। या तो हम पूरी तरह से गुलाम होंगे या पूरी तरह से आजाद होंगे। आजादी लेने देने के लिए समझौते नहीं होते, सत्ता के लिए हो सकते हैं समझौते। आजादी एक ऐसा शब्द है जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में कोई समझौता नहीं हो सकता उसके ऊपर। तो जब यह पता चला कि हमको तो आजादी देने के लिए बाकायदा समझौता हुआ है, तब तो दिल और बैठ गया हमारा। क्यों, समझौता क्या है? देखना चाहिए, पता करना चाहिए। तो वो समझौता भी यहां नहीं है, वो लंदन में पड़ा हुआ है कहीं। और वो समझौता लंदन में पड़ा हुआ है इस शर्त के साथ कि वो 52 साल के लिए टॉप सीक्रेट है, 52 ईयर्स के लिए। तो 52 साल कब पूरे होंगे? 99 में पूरे होंगे। तो 99 तक आप उसको ओपन नहीं कर सकते। तो मेरे मन में शक हुआ है उसी दिन से कि देश की आजादी के लिए कोई समझौता हो और उसको 52 साल के लिए सीक्रेट घोषित किया जाए, तो उसमें कोई जरूर ऐसी बात है जो देश के लोगों से छुपाई गई है, अन्यथा उस समझौते को छुपाने की जरूरत क्या है? और मैं तो भारतीय दर्शन में विश्वास करने वाला आदमी हूं, छुपाना उसी को पड़ता है जिसमें कोई गड़बड़ी होती है। सत्य को छुपाने की कभी कोई जरूरत नहीं होती, सत्य तो अपने आप खुलता है। झूठ को छुपाने के लिए आवरण डालने पड़ते हैं, झूठ को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जरूर कोई ऐसा बड़ा झूठ है जो हमारे देश में घटित हुआ है और इस देश के लोगों से छुपाया गया है 52 साल के लिए। और उस दिशा में हम लोगों ने उस दिन से कोशिश शुरू की है कि पता तो करें कि वो झूठ क्या है। तो पूरी बात तो अभी पता नहीं चल रही है, क्योंकि वहां भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी आसानी से चीजें मिलती नहीं है। लंदन में भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, आसानी से चीजें मिलती नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मिला है। जो मिला है उसी को आपसे कहने वाला हूं। हो सकता है इस बात के लिए मुझे किसी दिन जेल हो जाए, क्योंकि 99 तक वो टॉप सीक्रेट है। और कानून है 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत ये सारी बातें सीक्रेट हैं। और मेरे जैसा आदमी अगर उसको ओपन कर रहा है तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, और वो दुष्परिणाम यही है कि जेल होती है। ऑफिशियल सीक्रेसी को तोड़ने वाले आदमी को जेल होती है। तो हो सकता है ये हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को यह बात पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। तो आज की समस्याओं के बारे में हम कुछ बात समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या है। क्या समझौता हुआ है? एक गंभीर समझौता हुआ ये कि जब अंग्रेज चले जाएंगे यहां से तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाएगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अंग्रेजों के पास 125 और कंपनियां थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलाकर 126 कंपनियां थी उस समय, 126 कंपनियां थी ब्रिटेन की हिंदुस्तान में 1947 के साल तक। तो समझौता यह हुआ है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो ले जाएंगे, लेकिन बाकी 125 ब्रिटेन की कंपनियों को यहीं छोड़कर जाएंगे। यह समझौता। तब सोचिए कि आपकी आर्थिक आजादी का मतलब क्या है। जिस देश की पूरी लड़ाई इसी बात पर लड़ी गई हो कि हम विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे, तो उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, सभी विदेशी कंपनियों के माल का बहिष्कार था इस देश में। और लोकमान्य तिलक ने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था और एक बार उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, और यह भी कहा था कि यह संपूर्ण स्वराज्य तभी आएगा जब देश में स्वदेशी आएगा। और एक दिन यहां तक कह दिया था उन्होंने कि स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर स्वदेशी नहीं होगा तो स्वराज्य नहीं आ सकता, और स्वराज्य भी चाहिए तो संपूर्ण चाहिए मुझको। तो उस संपूर्ण स्वराज्य की कल्पना का क्या हुआ कि जब 125 अंग्रेजों की कंपनियां इस देश में छोड़ दी गई और एक कंपनी को ले गए सिर्फ यहां से। क्यों छोड़ दी उन्होंने? उसका बहुत सीधा सा जवाब है जो समझ में आता है कि अंग्रेजों को लूट का माल मिलता था, उनकी जो कंपनियां हिंदुस्तान में धंधा करती थी वो मुनाफा कमा के ले जाती थी, तो वो मुनाफा उनको मिलता था, और वो मुनाफा बंद हो जाए ये उनको मंजूर नहीं था। तो बहाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो वापस ले गए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ज्यादा था। उस जमाने में बाकी ब्रिटेन की कंपनियों के बारे में इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन ईस्ट इंडिया के बारे में तो बहुत बड़ी चर्चा होती थी। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन था वो सारे देश के लिए न्यूक्लियस बना था। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ले गए, लेकिन 125 कंपनियों को यहीं छोड़कर गए। गलती तो यहीं हो गई हमसे कि उन विदेशी लुटेरों को पूरी तरह से भगा देने की जरूरत थी, तो उनमें से सिर्फ एक कंपनी को भगाया, इस कंपनियों को इसी देश में रखा गया, और वो 125 कंपनियां ही आज बढ़कर 4000 हो गई हैं। माने हमारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं पर है, 1947 के उस समझौते। अगर ये ना होता, ये गलती ना होती कि 125 कंपनियों को रखेंगे और एक को भगा देंगे, तो शायद ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता जो आज हम देख रहे हैं कि देश में 4000 परदेशी कंपनियां हैं, और उन 125 कंपनियों में कुछ कंपनियां तो बड़े बड़े नाम वाली हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड उसी जमाने की कंपनी है जबकि ईस्ट इंडिया थी, आज की नहीं है, ये 100 साल पुरानी है। लिप्टन इंडिया लिमिटेड आज की कंपनी नहीं है, 100 साल पुरानी कंपनी। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री जिसका नाम है आईसीआई आज की कंपनी नहीं है, अंग्रेजों के जमाने की है। और ये इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री वो कंपनी है जब अंग्रेजों के जमाने में भी हिंदुस्तानी कंपनियों को बर्बाद करने की कोशिश करती थी, आज आजादी के 50 साल में भी एशियन पेंट जैसी स्वदेशी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई है, वही आईसीआई कंपनी है। आज ये आईसीआई कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनी एशियन पेंट्स को टेक ओवर करने की कोशिश में लगी हुई, एक बार वो कोशिश फेल हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं है, वो हो सकता है दूसरी बार फिर प्रयास करेंगे, तीसरी बार फिर, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो नहीं बदलता कभी, वो चरित्र जो अंग्रेजों के जमाने में था वही चरित्र आज भी है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम आजाद हो गए हैं? आर्थिक गुलामी तो वैसी की वैसी है, और उससे भी ज्यादा तीसरी गंभीर बात यह है, शायद वो समझौते में ही शामिल है, उसके दस्तावेज अभी नहीं मिल पाए, लेकिन मैं ये अनुमान से कह रहा हूं, दस्तावेज मिल जाएंगे तो इसी बात को मैं ताल ठोंक के कहूंगा जैसे बाकी सारी बातों को कहता हूं। शायद यह भी हुआ होगा कि अंग्रेज जब चले जाएंगे, अंग्रेजों की सरकार यहां से चली जाएगी, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए सारे के सारे कानून हिंदुस्तान में चलते रहेंगे आजादी के बाद भी। ये ऐसा ही एक समझौता हो सकता है, हुआ हो, अनुमान मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब ऐसे ऐसे समझौते हो सकते हैं तो यह समझौता होने में भी कोई मुश्किल नहीं आई होगी। और वही मुझे दर्द है, दुख है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हिंदुस्तान में 3735 कानून हैं जो अभी भी चल रहे हैं। वो कानून 200 साल पुराने हैं, कुछ कानून 250 साल पुराने हैं, कुछ कानून 150 साल पुराने हैं, कुछ कानून 100 साल पुराने हैं। आप जरा सोचिए कि कोई कानून मान लीजिए 150 साल पुराना है, तो 150 साल पहले देश की परिस्थिति क्या रही होगी? तो 150 साल पहले की देश की परिस्थिति में कोई कानून बनाया गया, और एक दूसरी बात कि वो कानून बनाया अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। तो जो कानून अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बनाया हो और जो कानून देश की 150 साल पुरानी परिस्थिति के हिसाब से बनाया गया हो, वो कानून आज कैसे लागू हो सकता है? उसके पीछे वो कौन सा रैशनल है, कौन सा तर्क है कि 150 साल पुराना कानून भी इस देश में वैसे ही चलेगा जैसे अंग्रेजों के जमाने में चलता था? ये कौन से तर्क से हम मान सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं? और ऐसा कानून कौन सा है? मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में 150 साल पुराने कानून कौन कौन से हैं। लगभग 150 साल पुराना कानून है इस देश में जो पुलिस का कानून है, जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का बनाया हुआ है। ऐसे ही एक दूसरा कानून है जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। अंग्रेजों के जमाने में उसको कहते थे इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, अब उसको कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। बाकी कुछ भी नहीं बदला है उसमें। 140 साल 135 साल पुराना कानून है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो अभी भी चल रहा है इस देश में। 125-130 साल पुराना कानून है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, जिसके आधार पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट काम करता है। 1885 का बनाया हुआ कानून है। आज से लगभग 100 साल पुराना कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, 1894 का बनाया हुआ है। वह आज भी चल रहा है इस देश में आजादी के 50 साल के बाद भी। तो ऐसे ऐसे वो सारे कानून चल रहे हैं इस देश में जो अंग्रेजों ने बनाए थे इस देश में। और अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे? उसके पीछे अंग्रेजों का स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? अंग्रेजों ने इस देश में इनकम टैक्स एक्ट बनाया, अंग्रेजों ने इस देश में सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया, उसके साथ उन्होंने सॉल्ट भी जोड़ दिया था। सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स एक्ट पूरा नाम होता था, वो अभी तक चल रहा है। 2 साल पहले उसमें से सॉल्ट नाम हटाया गया, बस बाकी सबका सब है। मैंने सॉल्ट भी हटाने में हमको 50 साल लग गए उस कानून में से। तो ये जो टैक्सेशन के टोल टैक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं त्र्यंबकेश्वर से आया तो वहां शहर में घुसने ही के लिए वो कहने लगा 10 रुपया दो। काय का 10 रुपया? कि टोल टैक्स लगता। तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि अंग्रेज तो मर गए और चले गए यहां से, टोल टैक्स छोड़कर गए हमारी छाती पर, जो अभी भी चल रहा है इस देश में। ऐसा ही एक कानून है ऑक्ट्रॉय टैक्स, यह भी अंग्रेज छोड़कर गए थे इस देश में, वो भी ऐसे ही चल रहा है इस देश में। और ऐसा ही एक कानून है सेल्स टैक्स, जो अंग्रेजों ने अपने जीवन में माने हिंदुस्तान छोड़ने के अंतिम समय में बनाया था और लागू करवाया था। तो टैक्सेशन के ये जितने कानून इस समय चल रहे हैं देश में, ये सब अंग्रेजों के हिसाब से बनाए गए हैं, अंग्रेजों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। अंग्रेजों का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या था? अंग्रेजों का सबसे बड़ा स्वार्थ ये था कि हिंदुस्तानी जो उद्योगपति हैं, हिंदुस्तानी जो व्यापारी हैं, उनको बर्बाद करना है। क्यों? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कंपनियों का धंधा यहां चले, व्यापार चले। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कंपनियों में इतनी दम नहीं थी कि वो हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ कंपटीशन में टिक सकें। दस्तावेज इस बात के हैं कि अंग्रेजों के लंकाशायर और मैनचेस्टर में जो कपड़ा बनता था वो सूरत के बनाए गए कपड़े से बहुत घटिया होता था, वो बिक नहीं पाता था इस देश में। अंग्रेजों के देश में उस जमाने में जो स्टील बना करती थी वो हिंदुस्तान में बनने वाली स्टील से 100 गुनी घटिया होती थी। और मेरे पास इस बात के सबूत हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जितने जहाज बनाती थी पानी के, वो सब स्टील हिंदुस्तान से जाता था। उस जमाने में यह माना जाता था कि पूरी दुनिया में दो ही देश थे जिनके पास क्वालिटी का स्टील होता था, या तो था डेनमार्क और या था हिंदुस्तान। और 1835 के साल में आप कल्पना कर सकते हैं कि 1835 के साल तक हिंदुस्तान में स्टील बनाने के 10,000 कारखाने थे, एक दो नहीं। और उन 10,000 कारखानों में जो स्टील बनता था, उस स्टील की क्वालिटी का आप अंदाजा करना चाहें तो कभी चले जाइए महरौली नाम के गांव में, एक खंभा लगा हुआ है स्टील का बनाया हुआ, उस पर आज तक जंग नहीं लगी है। दिल्ली के पास सैकड़ों साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है, जंग नहीं लगी है। क्या था? क्वालिटी का काम करते थे हम, कोई ऐसे ही छोटे मोटे लोग नहीं थे। और वो बेस्ट क्वालिटी का स्टील है, इसलिए आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। आज हिंदुस्तान में कोई माइकीलाल कंपनी ऐसी नहीं है जो स्टील बना के दे और वो 100 साल तक टिक जाए। आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, एक जमाना था कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी। तो हिंदुस्तान में ऐसे क्वालिटी के सामान बनते थे जिनकी टक्कर में अंग्रेजी सामान बहुत घटिया होते थे, तो अंग्रेजों को एक काम करना पड़ा कि हिंदुस्तानी कंपनियों को बंद करवाना पड़ेगा और अंग्रेजी माल तभी बिक सकेगा। तो हिंदुस्तानी कंपनियों को बंद कराने के लिए उनको एक रास्ता मिला, क्योंकि सरकार उनकी थी इस देश में, तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, और अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री कर दो। तो अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री होता था और हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाया जाता था, एक दो नहीं, पांच पांच तरह के टैक्स लगाए जाते थे। और टैक्स लगा लगा के हिंदुस्तानी माल को महंगा बनाया जाता था, अंग्रेजों का माल सस्ता बनाया जाता था। उसके नतीजे क्या निकले, अंग्रेज हमसे कंपटीशन में कभी टिक नहीं पाए, लेकिन चूंकि बेईमानी से उनकी सरकार चलती थी तो उन्होंने हिंदुस्तान के व्यापारियों को बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून चलाकर और इस देश में लागू करवा के। 1835 के साल तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था, जब तक ये टैक्स के कानून नहीं लगे थे इस देश में, जब तक अंग्रेजों का टैक्सेशन इस देश में नहीं आया था, तब तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था। और कितना एक्सपोर्ट हम करते थे, दुनिया के पूरे बाजार में जितना एक्सपोर्ट होता था उसका 33% हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट होता था। तो अगर दुनिया में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 33% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री रहा होगा, ये तभी संभव है। लेकिन दुर्भाग्य से हमको ये पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान तो एग्रीकल्चरल कंट्री रहा, हम एग्रीकल्चरल कंट्री के साथ साथ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कंट्री थे, ये बात माइनस की गई है। नहीं तो हम इतना एक्सपोर्ट कैसे कर पाते थे अगर इंडस्ट्रियल बेस नहीं था इस देश में। तो वो इंडस्ट्रियल बेस को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून लगा के, और नतीजा जानते हैं क्या निकला, हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्री धीरे 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 बंद होती चली गई, क्योंकि अंग्रेजों का माल सस्ता होता चला गया, हिंदुस्तानी लोगों का माल महंगा होता चला गया। और एक जमाने में जो देश सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री था, 33% निर्यात करता था, आज 1997 में उस देश का कुल निर्यात मालूम है कितना, 0.01%। तो वो टैक्सेशन के सिस्टम ने हमारा क्या नुकसान किया है, सबसे बड़ा नुकसान किया है कि हम 33% एक्सपोर्ट करने वाले देश आज 0.01% का एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के बाद। हम गिर रहे हैं या उठ रहे हैं, ये इसी बात से सिद्ध होता है। और वो टैक्सेशन का जो सिस्टम चलता था अंग्रेजों के जमाने में, उसकी एक दूसरी बात और बता दूं कि अंग्रेजों ने जो टैक्सेशन के लिए ऑफिसर्स बनाए थे, जो टैक्स वसूलते थे, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी, उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती थी जो इनकम टैक्स वसूलते थे, जो सेंट्रल एक्साइज का लॉ चलाते थे, वगैरह वगैरह, उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका एक गोल्डन रूल था, वो गोल्डन रूल ये था कि आप हिंदुस्तान के व्यापारियों से टैक्स वसूल पाएं या ना वसूल पाएं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप हिंदुस्तान के व्यापारियों को इतना डिमोरलाइज कर दें कि वो अपने कारखाने बंद कर दें, यह उनकी ट्रेनिंग होती थी। और जिस तरह की ट्रेनिंग अंग्रेजों के जमाने में टैक्सेशन के ऑफिसर्स को दी जाती थी, वही ट्रेनिंग आज आजादी के 50 साल के बाद भी दी जा रही है ऑफिसर्स को। और आज भी ऑफिसर्स आपकी छाती पे खड़े रहते हैं, उनका बस चले तो आपकी सारी इंडस्ट्री में ताला डलवा दें वो। एक तो टैक्सेशन के कानून है जो आपको काम नहीं करने देते, दूसरे ऊपर से ऑफिसर्स आपकी छाती पे खून पीने के लिए बैठे रहते हैं। और उसके बाद भी इस देश की इंडस्ट्री जिंदा है तो मैं इस देश के उद्योगपतियों को सलाम करता हूं, इस बात के लिए नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतने कष्ट सहते हुए भी इस देश में कुछ उद्योग का काम चलता है, उत्पादन का काम चलता है। अदरवाइज तो अंग्रेजों की पॉलिसी के अनुसार तो सब खत्म हो जाना चाहिए। और दुर्भाग्य हमारा यही है कि जो कुछ अंग्रेजों ने चलाया टैक्सेशन का, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, बाद में सेल्स टैक्स, वो सब चल रहा है इस देश में। क्यों चल रहा है ये सवाल पूछने की जरूरत है। अब तक हमको मालूम नहीं था, लेकिन जिस दिन हमको मालूम हो गया तो हमको ये सवाल पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ इनकम टैक्स क्यों चल रहा, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ सेंट्रल एक्साइज क्यों चल रहा। और अगर यही कानून चलने थे तो हिंदुस्तान में 50 साल से पार्लियामेंट कर क्या रहा। 50 साल से हम इनको हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर करके वोट देकर चुनकर भेज रहे, ये कर क्या रहे हैं वहां बैठकर। जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही चलाने हैं तो ये पार्लियामेंट क्यों चला रहे हैं, इसमें भी ताला डाल दीजिए, क्योंकि देश तो ऐसे ही चल रहा है अंग्रेजों के जमाने के हिसाब से। ये सवाल देश की राजनीतिक व्यवस्था को उठाने चाहिए, लेकिन देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन से सवाल उठा रही हैं जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपको बांटो जातियों में, आपको बांटो धर्म में, सिर्फ उनको वोट चाहिए। जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है वो देश में कभी उठाए नहीं जाते पार्लियामेंट के अंदर, बेवकूफी की बहसें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर। और अगर आप पार्लियामेंट की बहस सुने तो सिर पीट लेंगे किसी दिन अपना। वहां बहस होती है कि मेरे गांव में बिजली का खंभा नहीं गड़ा है, मेरी सड़क की नाली चौक हो गई है, मेरा यहां कूड़ा नहीं उठा, ये सब काम के लिए पार्लियामेंट है। जो बहस होनी चाहिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो चली जाती है पार्लियामेंट में कभी कभी। जो बहसें होनी चाहिए पार्लियामेंट में उनसे किसी को मतलब नहीं है। और ये टैक्सेशन का सिस्टम वैसे ही बर्बाद कर रहा है हमको जैसे अंग्रेजों के जमाने में करते थे। और मुझे तो उससे भी बड़ा दुख है, एक दिन मुझको पता चला कि अंग्रेजों ने इस देश में 97% इनकम टैक्स लगाया था। सबसे पहले मैंने 100 रुपए पे 3 रुपया बचेगा, 97 दे दीजिए टैक्स के रूप। तो 97% टैक्स क्यों लगाया उन्होंने, तो उनकी दो मान्यताएं थी। वो एक बात तो ये कहते थे कि अगर हिंदुस्तानी व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना शुरू कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 97% टैक्स देने के बाद बचेगा क्या आपके पास। और दूसरी मान्यता उनकी यह थी कि अगर वो ईमानदारी से टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे, माने अंग्रेज चाहते थे कि आप टैक्स की चोरी करें। क्यों? क्योंकि आप बेईमान हो जाएंगे। और दूसरी मान्यता उनकी यह थी कि अगर वो ईमानदारी से टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे, माने अंग्रेज चाहते थे कि आप टैक्स की चोरी करें। क्यों? क्योंकि आप बेईमान हो जाएंगे। और बेईमान आदमी को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है, ये उनकी पॉलिसी थी। इसलिए उन्होंने 97% इनकम टैक्स लगाया इस देश में। वो 97% इनकम टैक्स इस देश में आजादी आई 1947 में, उसके बाद भी सन 1982 तक चलता रहा 97% इनकम टैक्स। 1982 तक 97% इनकम टैक्स वसूला जाता था देश के लोगों से। क्यों वसूला जाता था? क्योंकि अंग्रेज कह गए थे। तो अंग्रेज कह गए थे अगर ऐसे ही हिंदुस्तान चलाना है तो आजादी का मतलब क्या है फिर? और इसलिए मैं कहता हूं, और अंग्रेजों ने ये सिस्टम क्यों बनाया, मैंने इससे पहले थोड़ी एक बात उसको गंभीरता, वो कह रहे हैं या तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे या बेईमान हो जाएंगे, माने आपको करप्ट बनाना है उन्हें ताकि आप उनके गुलाम बने। करप्शन जितना बढ़ेगा समाज में उतने आप गुलामी में फंसते जाएंगे। तो आज ये सब जो कुछ चल रहा है वो जान लीजिए कि आपको जानबूझकर या तो करप्ट बनाने के लिए है या बर्बाद करने के लिए। तो ये सरकारें भी वैसे ही चल रही हैं जैसे अंग्रेजों की सरकारें चला करती थी, ऐसे ही टैक्स वसूल रही हैं जैसे अंग्रेजों की सरकारें आपसे वसूला करती थी। अंग्रेजों की सरकार को जब मन में आता था लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा देते थे, आज की सरकार को जब मन में आता है 5% सर्विस टैक्स बढ़ा दो, आज ये कर दो कल वो कर दो।
और जैसे अंग्रेजों की सरकार क्या करती थी, टैक्स वसूलती थी लोगों से, उस टैक्स का होता क्या था, अंग्रेजों की सरकार उससे मौज मस्ती करती थी, बर्बाद करती थी लोगों के टैक्स के पैसे को, खून पसीने के पैसे को बर्बाद करती थी। कोई उनसे पूछने वाला नहीं था क्योंकि सरकार उनकी चलती थी। वही तो आज भी चल रहा है। आपकी कौन सी ऐसी सरकार है जो लोगों से लिए गए खून पसीने के टैक्स को ईमानदारी से खर्च करती है और किसी ठीक काम में खर्च करती है? आपके खून पसीने की कमाई से जो टैक्स वसूला जाता है वो खर्चा कैसे होता है? मैं लोगों को अक्सर उदाहरण देता हूं दो तीन के, कैसे आपका टैक्स खर्च किया जाता है। आपसे जबरदस्ती टैक्स वसूलते हैं और टैक्स खर्च कैसे करते हैं? टैक्स खर्च करते हैं कि एक बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 30 एमपी गए विदेश यात्रा पर, उनके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया। कहां से आया वो पैसा? आपके दिए गए टैक्स में से निकाला सरकार ने। क्या करने गए थे विदेश यात्रा पर? 30 एमपी को भेजा था अमरीका और यूरोप के तमाम देशों में यह सीखने के लिए कि हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए। मैंने हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए यह सीखने के लिए एमपी गए थे अमेरिका और गए थे यूरोप। करोड़ों रुपया बर्बाद करके आए इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का। क्या सीख कर आए होंगे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि अमेरिका में हिंदी चलती नहीं, यूरोप में हिंदी चलती नहीं, तो क्या सीखेंगे वहां जाकर? एक काम जरूर किया होगा कि अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदारी करके ले आए होंगे। जो मानसिक गुलामी बैठी हुई है कि इंपोर्टेड माल बहुत अच्छा होता है तो ला के घर भर दिया होगा, और इससे ज्यादा क्या किया होगा इन्होंने? अभी कुछ दिन पहले मैं गोवा में था, 12-13 दिन मैं गोवा में रहा। गोवा में मेरी एक पब्लिक मीटिंग हुई थी, उस पब्लिक मीटिंग में दो तीन धारा सभ्य बैठे हुए थे, एमएलए बैठे हुए थे असेंबली के। मेरी मीटिंग में व्याख्यान खत्म होने के बाद एक एमएलए ने कहा, राजीव भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। कि नहीं नहीं कोने में जाके कहूंगा अकेले में। तो मैंने कहा चलो भाई, क्या ऐसी खास बात है जो कोने में जाके कहें? तो कहने लगा, अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार ने हमको सिंगापुर भेजा था। तो मैंने कहा कौन कौन गए थे? कि पूरे एमएलए भेजे थे, अपोजिशन के पार्टी के सबको भेज दिया सिंगापुर। क्या करने गए थे? गोवा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए उसको सीखने सिंगापुर गए थे। मैंने गोवा के लोगों के खून पसीने की कमाई का टैक्स बर्बाद करने गए थे सिंगापुर। तो मैंने कहा क्या सीख के आए सिंगापुर में? कि कुछ नहीं सीखा। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा, बहाने के लिए, गोवा की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ तो आपने कहा होगा कि हम क्या लेके आए सिंगापुर से। तो उन्होंने कहा कि हम बस इतना ही करके आए कि सिंगापुर में जो ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर है उसकी ड्रेस हमको बहुत अच्छी लगी, वही हम ले आए वहां से। और वो गोवा के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को उन्होंने पहना दिए। अभी आप कभी गोवा जाइए तो इस समय गोवा का जो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है वो वही ड्रेस पहनता है जो सिंगापुर में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही पहनता। उन्होंने मान लिया कि ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। करोड़ों रुपया बर्बाद किया होगा उस काम के लिए। कैसे आपका टैक्स बर्बाद होता है? सरकारों के द्वारा। हिंदुस्तान में कुछ मंत्री हैं जो एक्स मिनिस्टर हो गए, पहले वो मिनिस्टर थे, तो जैसे ही उनका ब्लड प्रेशर हाई होता था रोज हवाई जहाज में उड़ के लंदन पहुंच गए, कभी ह्यूस्टन पहुंच गए, कभी कहीं पहुंच गए। जैसे हिंदुस्तान के सब डॉक्टर मर गए, यहां कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, उनका इलाज तो वहीं होगा विदेश में जाके। और ऐसे एक नहीं 57 एक्स मिनिस्टर्स हैं जो अपना इलाज कराने के लिए विदेश गए, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपया डुबो दिया इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का। हमारे कुछ दोस्तों ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन किया है इस मुद्दे पे। तो जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो 57 एमपी के कान खड़े हो गए। बहुत कोशिश की उन्होंने कि ये मत करिए, मत करिए, मत करिए, डराया धमकाया सब किया। मैंने कहा हमको पता चल गया है, हम करेंगे, देश की जनता को पता तो चले कि तुम कैसे बर्बाद करते हो देश के लोगों का पैसा। और हम लोगों ने एक ही प्रे किया है उनसे कि जो पैसा इन्होंने खर्च किया है अपने इलाज पर वो इनसे वसूलना चाहिए, क्योंकि वो नेशनल मनी है, इनके बाप का नहीं है, इनके घर का नहीं है। तो कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, और नोटिस इशू किए हैं तो उसमें कुछ होने की संभावना है, और होने की संभावना है तो एक दिन आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान में ऐसे 57 नेता हैं जो अपना इलाज के लिए करोड़ों रुपया बर्बाद करके आए हैं विदेशों में। ऐसे आपका पैसा बर्बाद करते हैं ये, जो आप टैक्स के रूप में इनको देते हैं। और ये सरकार पता है कैसी है? मैं अक्सर एक गंभीर बात कहता हूं लेकिन मजाक में कहता हूं उसको, हिंदुस्तान में एक शराबी पति जैसा व्यवहार करता है वैसे भारत सरकार व्यवहार करती है। शराबी पति क्या कहता है? शराबी पति कहता है अपनी पत्नी से कि आज पैसा दे दे, कल से पीना छोड़ दूंगा। तो बीवी कहती है कि नहीं 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 दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, झगड़ा चलता रहता है। फिर बेचारी बीबी पसीज जाती है, दे देती है निकाल के, इस उम्मीद में कि शायद ये कल से शराब पीना छोड़ देगा। वो कल दूसरे दिन फिर आ जाता और कहता आज और दे दे, अब कल से नहीं पीऊंगा। और उसकी कल कभी नहीं आती, वो रोज लेके जाता है घर से और पैसा बर्बाद करके आता है शराब में। हिंदुस्तान की सरकार की यही हालत है। वो क्या कहती है? आज दे दो 31 दिसंबर तक, कल से नहीं मांगेंगे आपसे। क्या है ये वीडीआईएस? एक शराबी पति जिस तरह अपनी बीवी से पैसा निकालता है, ठीक वही हालत में भारत सरकार आपसे पैसा निकालने के लिए वीडीआईएस चला रही है कि बस 31 दिसंबर तक दे दो, फिर नहीं आएंगे आपके दरवाजे पर। कोई गारंटी नहीं है। जैसे शराबी पति का भरोसा नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस सरकार का भरोसा मत करिए आप। कोई गारंटी नहीं है कि 31 दिसंबर तक आपने निकाल के दे दिया तो 1 जनवरी को फिर आपकी छाती पे आके ना खड़े हो जाए कि अब दे दो हमको फिर दोबारा। ये ऐसे ही करने वाले क्यों जानते हैं? शेर के मुंह में जब आदमी का खून लग जाता है तो आसानी से आदमी का शिकार नहीं छोड़ता। इन सरकारों के मुंह में खून लग गया है आपके मुफ्त के पैसे की कमाई पर तागड़ धिन्ना करने का। ये सरकारों के मंत्रियों को अगर टैक्स देना पड़ता ना, एमपीज को टैक्स देना पड़ता, तो उनको पता चलता कि दर्द क्या होता है। आपने कभी सुना है किसी अखबार में कोई खबर आई है कभी? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए, कोई पत्रकार बैठा हो तो उसको भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आजादी के 50 साल में इनकम टैक्स वाले हिंदुस्तान के किसी नेता के घर में गए हैं, आपने कभी सुना? आजादी के 50 साल में एक नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई, कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे यहां मर जाता है उसके बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं। उनका नाम था जगजीवन राम। एक दिन उन्होंने भरी हुई पब्लिक मीटिंग में कह दिया था कि मैं हमेशा अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल जाता हूं, हमेशा भूल जाता हूं। लेकिन इनकम टैक्स वाले कभी नहीं गए जगजीवन राम के घर पर छापा मारने के लिए, रोज आपकी छाती पे खड़े रहते हैं, लेकिन नेताओं के घर आज तक कभी कोई नहीं गया छापा मारने के लिए। क्यों? नेताओं के लिए अलग कानून है, आपके लिए अलग है। और सबसे ज्यादा काला धन अगर किसी के पास है तो नेताओं के घर में मिलेगा। आप पूछ लीजिए, नहीं तो सुखराम के बिस्तर के गद्दे के नीचे से 4 करोड़ कहां से निकल आया? पूछिए। ऊपर वालों ने दे दिया, आपके घर में नहीं दिया, मेरे घर में नहीं दिया, सुखराम के ही घर में दिया। तो अगर एक नेता के बिस्तर के गद्दे के नीचे से 4 करोड़ निकल सकता है तो उसके बैंक बैलेंस सारे के सारे सीज करके देखिए, 6 करोड़ निकल आया है उसमें से। तो जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन है, जो सबसे ज्यादा चोर और बेईमान है, उनके घर में इनकम टैक्स वाले कभी नहीं जाते, हिम्मत ही नहीं पड़ती उनकी जाने की। और आपको तोप दिखाते रहते हैं कि दे दो दे दो दे दो, नहीं तो कर देंगे चालान। तो नेताओं के लिए एक अलग कानून है, आपके लिए दूसरा कानून है। कौन सा देश है ये और कौन से देश में आप रह रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ये कानून ही नहीं होना चाहिए, और कानून है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। उसमें नेताओं को क्यों छोड़ा जाता है, आम आदमी को क्यों परेशान किया जाता है? लेकिन है, और इस बात को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उठाती क्योंकि हर पार्टी में ऐसे नेता हैं, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं ना। किसी राजनीतिक पार्टी ने यह प्रश्न नहीं उठाया आज तक कि नेताओं के घर पर इनकम टैक्स की रेड क्यों नहीं होती, क्यों उद्योगपतियों के ही घर पर होती है, क्यों हिंदुस्तान के साधारण लोगों के घर पर? किसी पार्टी ने यह सवाल नहीं उठाया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सीधी सी बात है कि उनके पार्टी में भी ऐसी चोर है जिनके घर में ब्लैक मनी मिलेगा। तो जब चोर चोर सब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो चूसते हैं लोगों का खून, वही हो रहा है आपके देश में। सब इकट्ठे हो गए हैं, दिखने में सब अलग अलग पार्टी के हैं, खून चूसने में कोई पीछे नहीं है आपसे, सब एक जैसा करते हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं 50 साल से। कितनी पार्टियों को हमने बदल बदल के देखा, जरा बताइए कि किसी का शासन दूसरी पार्टी से फर्क दिखाई देता है आपको? कोई ऐसा शासन आपको दिखाई देता है कि यह बाकी पार्टी से अलग है? सब तो एक जैसे हैं, तो फिर काहे के लिए मशक्कत करते हैं कि इस पार्टी को दे दो, उस पार्टी को दे दो, उसको कर दो, उसको कर दो, सब तो एक जैसे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में करप्शन का सबसे बड़ा कारण है इनकम टैक्स एक्ट। हिंदुस्तान में करप्शन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। और ये दोनों कानून जिस दिन खत्म हो जाएंगे, मैं आपको दावे से कह सकता हूं 70% करप्शन इस देश में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पैसा काला और सफेद नहीं होता, पैसा पैसा होता है। कानून गलत है जो एक पैसे को काला कहता है, दूसरे पैसे को सफेद कहता है। और अगर गलत कानून है उसके हिसाब से आपको हांका जा रहा है डंडा मार मार के, बजाय इसके कि हम वो गलत कानून ही बदल लें तो व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और मैं ये बात हमेशा कहता हूं, ओपनली कहता हूं, पब्लिकली कहता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, जिस दिन सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, जिस दिन ऑक्ट्रा बंद हो जाएगा, जिस दिन टोल टैक्स बंद हो जाएगा, जिस दिन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, हिंदुस्तान का 90% करप्शन दूर हो जाएगा। क्योंकि ये डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने बनाए थे आपको करप्ट बनाने के लिए। तो आपका करप्शन दूर तभी होगा इस देश में जब तक आप ये डिपार्टमेंट बंद नहीं कराएंगे, ये कानून रद्द नहीं। और ये डिपार्टमेंट बंद कैसे होंगे? ये डिपार्टमेंट बंद होंगे जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून है उनको रद्द करवाया जाए, तब ये डिपार्टमेंट बंद होंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर, हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है अंग्रेजों के जमाने के 3,735 ऐसे जितने कानून हैं वो सब रद्द होने चाहिए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। लॉ कमीशन को हमने चिट्ठी लिखी और लॉ कमीशन को हमने चिट्ठी लिखी है और उनसे हमने यही कहा कि ये लॉ कमीशन बनाया ही इसलिए गया था कि अंग्रेजों के जमाने के जो गलत कानून है उनको रिपील किया जाए, उनकी जगह पर जरूरत हो तो नए कानून बनाए जाए। आप क्या कर रहे हैं 50 साल से? तो उन्होंने उसका नोटिस लिया है। और नोटिस कैसे लिया है? एक भाई ने कहा उस चिट्ठी को पढ़कर कि आपकी चिट्ठी पढ़ी तो पता चला कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जमाने के 3,735 कानून चल रहे हैं। ये उन्होंने पता किया जब हमारी चिट्ठी पढ़ी है। हमको क्या जवाब मिला है? आपकी चिट्ठी को प्रधानमंत्री के पास भेज दिया गया है, उनकी तरफ से आदेश आएगा तो उसकी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। अब वो कार्यवाही 10 साल में पूरी होगी, 50 साल में कोई नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूं लोगों से कि इस देश में सच्ची आजादी आई नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े ये कानून रद्द नहीं होंगे। और यह भी जान लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी इन कानूनों को रद्द नहीं कराएगी, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी को एक ही डर है कि अगर ये कानून रद्द हो गए तो कौन उनके पास जाएगा? उनकी तो हैसियत खत्म हो जाएगी। नेताओं के पास आप क्यों जाते हैं? नेताओं के पास आप तब जाते हैं जब इनकम टैक्स वालों ने फंसा दिया, सेंट्रल एक्साइज वालों ने फंसा दिया। किसी नेता के पास आप पकड़ेंगे, उसको 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख देंगे, भैया इसमें से छुड़ा दो। जब ये चक्कर ही नहीं रहेगा तो नेताओं की पूछ कैसे होगी? इसलिए कोई पार्टी तैयार नहीं है ये रद्द कराने। ये तो हिंदुस्तान की जनता को करना पड़ेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी मार आप खा रहे हैं, इसकी मार मैं खा रहा हूं। नेताओं पर इसकी मार नहीं पड़ रही इसलिए उनको दर्द नहीं है। कानून रहे तो रहे, चले जाए तो चले जाए, ये मार आप पर पड़ रही है, मुझ पर पड़ रही है, इसलिए मुझे और आपको करना पड़ेगा। कोई और नहीं आके करेगा, बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा, स्वर्ग से उतरकर कोई नहीं आएगा। पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। भगवान भी उसी का साथ देता है जो पुरुषार्थी होता है। भगवान उसका साथ कभी नहीं देता जो चादर तान के सोता रहता है। पुरुषार्थी बनना पड़ेगा आपको, और ऐसे गलत व्यवस्थाओं के कानून आपको रद्द कराने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ और भी दूसरी व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों के जमाने की हैं जिनको रद्द कराना पड़ेगा। जैसे मैं एक और कहता हूं कि हिंदुस्तान के समाज में आज सबसे ज्यादा अन्याय है क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वह बर्बाद है, इसलिए न्याय नहीं है इस समाज में। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की ही बलियारी है कि बड़ा बड़ा करप्शन करने वालों को भी जमानत मिल जाती है और 100, 200, 500 रुपए की घूस लेने वालों को जेल के अंदर कर दिया जाता है। जो 960 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं उनको जमानत मिलती है, और जो बेचारा 150 रुपए का घोटाला करे उसको जेल के अंदर कर देते हैं। आपका जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, हिंदुस्तान में इतने करोड़ों के घोटाले हुए हैं पिछले 7-8 साल में, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं पिछले 7 साल में, रिकॉर्ड कायम हुआ है, कभी नहीं हुआ जो रिकॉर्ड, वो अब कायम हुआ है। और 70,000 करोड़ के घोटाले करने वाले लोग जिंदा हैं, उनमें से सब नहीं मरे हैं, 2-1 मर गए हैं, बाकी सब जिंदा हैं, लेकिन उनको जेल नहीं हो रही है, सब छूटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं, और उनमें से कई लोग तो शायद इस बार इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपकी कानून व्यवस्था लचर है, आपकी न्याय पद्धति बेकार है, जिसमें बड़े बड़े करप्शन करने वालों को खुली छूट है, माने बड़े बड़े मगरमच्छों को खुली छूट है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा के बैठे हुए। तो ये न्याय की पद्धति ठीक नहीं है, क्योंकि ये अन्याय करती है। और ये न्याय की पद्धति ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजों ने इसको कायम किया है। आपको मालूम नहीं है, अंग्रेजों के ऑफिसर्स थे वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन करते थे, अंग्रेजों के ऑफिसर सबसे ज्यादा करप्शन करते थे, और अंग्रेजों के ऑफिसर सबसे ज्यादा करप्शन करते थे तो उस करप्शन में से छूटने के लिए भी वो रास्ते बना के रखते थे। तो हर किए हुए करप्शन में से छूटने का रास्ता बनाकर रखने के लिए कानून ऐसे लचर बनाते थे जो हरेक को छोड़ने का रास्ता देता था। एक सबसे करप्ट ऑफिसर था अंग्रेजों का, रॉबर्ट क्लाइव, उसको कभी कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि कानून इस तरह के बनाए थे। एक और करप्ट ऑफिसर था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसको कभी सजा नहीं हुई, और करप्ट होने के साथ साथ बहुत अत्याचारी पुलिस ऑफिसर था डायर, उसको कभी सजा नहीं हुई। करप्ट होने के साथ साथ अत्याचारी पुलिस ऑफिसर था सैंडर्स, उसको कभी सजा नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानून ऐसे लचर थे, हर एक ऑफिसर अंग्रेजों का छूट जाता था, कभी भी उस कानून के चक्कर में नहीं आता था, बेचारे सीधे साधे हिंदुस्तानी उसमें मारे जाते थे, क्योंकि न्याय व्यवस्था ऐसी बनाई थी। और मैकॉले ने बनाया था इस देश में आईपीसी का कानून, जिसके आधार पर चलता है हिंदुस्तान का न्यायालय, इंडियन पीनल कोड मैकॉले का बनाया हुआ है। और मैकॉले जब इस कानून को बना रहा था तो अक्सर एक बात कहा करता था वो, कि मैं हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा हूं जिसके लागू होने के बाद हिंदुस्तानी लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा, वो खुद कहता था इस बात। तो क्या होगा? हिंदुस्तान के लोग मुकदमे दर मुकदमे लड़ते रहेंगे, लेकिन कभी न्याय नहीं मिलेगा किसी को, मुकदमों के फैसले होते रहेंगे, लेकिन न्याय कभी किसी को नहीं मिलेगा। और वो कितना कुटिल आदमी था, वो कहा करता था कि जिस समाज में लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाता है, वो समाज खंड खंड टूट जाता है। अन्याय जब ज्यादा बढ़ता है किसी समाज में, वही समाज सबसे जल्दी टूटता है। तो वो कहता था कि अन्याय जितना बढ़े अंग्रेजों को उतना ही अच्छा। इसके लिए उसने बनाया था आईपीसी, बनाया था सीआरपीसी, बनाया था सीपीसी, और वही इस देश में चल रहा है आजादी के 50 साल के बाद भी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अक्सर मुझको कहा करते थे कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय नहीं मिलता। अभी भी ऐसी गुलामी है दिमाग में बैठी हुई कि जो कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो कभी न्याय नहीं मिलता, वो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा सबकी अंग्रेजों वाली है, गलती से वो हिंदुस्तान में पैदा हो गई हैं। हां, नहीं तो वो सब यही कामना करते होंगे कि हम पैदा होते इंग्लैंड में या अमरीका में या यूरोप में, गलती से भगवान ने उनको यहां भेज दिया, क्योंकि अंग्रेजों का गुणगान करने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलता कभी भी। तो मैं उन लोगों का जवाब देने के लिए एक अक्सर एक घटना सुनाता हूं छोटी सी, कि जब अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेजों की न्याय पद्धति नहीं थी इस देश में, तो कैसा न्याय मिलता था हिंदुस्तान के लोगों को, और जब अंग्रेज आए तो कौन सा अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर। हमारे देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो बहुत बड़े बड़े न्यायप्रिय राजा हुए हैं। सबसे ज्यादा न्यायप्रिय राजा माना जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है हिंदुस्तान के इतिहास में कि उसका पूरा का पूरा समय गोल्डन पीरियड था, स्वर्ण युग था। उसका कारण जानते हैं क्या? दो गंभीर बातें हैं जो समझिए। चंद्रगुप्त का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस पूरे पीरियड में हिंदुस्तान के लोगों पर टैक्स सबसे कम था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य की एक पॉलिसी थी, चाणक्य बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, कम लोग जानते हैं इस बात को, तो चाणक्य की क्या पॉलिसी थी अर्थशास्त्र की? दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के नौजवानों को पढ़ाई नहीं जाती। वो रॉबिन्सन पढ़ाए जाते हैं, एडम स्मिथ पढ़ाए जाते हैं, फलाने डुमा के सब पढ़ते हैं, लेकिन चाणक्य कभी नहीं पढ़ाया जाता हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र। सारे विदेशियों का इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ते हैं, और उसको मैं अर्थशास्त्र नहीं कहता, अनर्थशास्त्र कहता हूं, जो विदेशियों का हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। चाणक्य जो सही में अर्थशास्त्री था उसको कोई नहीं पढ़ता और नहीं पढ़ाता, क्योंकि सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ, सिलेबस उनका बनाया हुआ है। हम हैं हिंदुस्तानी, पढ़ते हैं स्मिथ के बारे में, स्मिथ हुआ होगा, मर गया होगा, मरा होगा, हमसे क्या लेना देना स्मिथ के बारे में हम पढ़ें? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ना चाहिए, हमको पढ़ाना चाहिए, नहीं होता। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र क्या कहता था? चाणक्य कहता था कि किसी भी समाज में कुल उत्पादन का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो कहता था कि टैक्स का रेट जितना कम होगा रेवेन्यू कलेक्शन उतना ही बढ़ेगा। ये बात आप लागू करके देखिए कि टैक्स की दर जितनी कम होती है टैक्स की अर्निंग उतनी ही बढ़ जाती है। हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, 97% वाला जब इनकम टैक्स लगता था तो टैक्स कलेक्शन होता था मुश्किल से 1000 करोड़, 500 करोड़। अब वो 97% वाला घटा के 30% कर दिया है, तो अब टैक्स कलेक्शन है इनकम टैक्स में 20,000 करोड़। देख लीजिए आप कितना बड़ा अर्थशास्त्री था चाणक्य, उसका सत्य सिद्ध कर लीजिए आप। हिंदुस्तान में एक मुख्यमंत्री हुआ जम्मू कश्मीर में, उसका नाम था गुलाम बख्शी। एक बार उसने चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ के अपने राज्य में लागू किया। उसने क्या किया कि टैक्सेशन का रेट बहुत कम कर दिया और एक फ्लैट रेट कर दिया टैक्स का 10%। उस जमाने में भी जम्मू कश्मीर में 30% के आसपास टैक्स रेट था, उसको भी घटा दिया, 10% कर दिया। बहुत लोगों ने उसकी आलोचना की और कहते थे कि ये डुबो देगा, बर्बाद कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। एक साल तक उसने कहा कि इसको चालू रखूंगा मैं, कम से कम एक एक्सपेरिमेंट करके तो देखूं। चाणक्य अगर कहता था तो उसका सत्य कितना है ये अंदाजा तो मुझे लगे। तो जैसे ही उसने 30% से 10% किया, जानते हैं उसका रेवेन्यू कलेक्शन कितना बढ़ गया? 300 times। जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था 30% के टैक्स रेट पर, उससे 300 गुना ज्यादा रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया 10% के रेट पर। और वो 10% से अगर 5% कर दिया होता तो शायद 400 times हो जाता। तो चाणक्य से बड़ा अर्थशास्त्री दुनिया में कौन होगा? तो इसलिए चंद्रगुप्त का समय गोल्डन पीरियड माना जाता है। और एक दूसरा कारण और था कि चंद्रगुप्त के समय में न्याय बहुत जल्दी मिलता था, देर नहीं लगती थी न्याय मिलने में। तो कितनी जल्दी न्याय मिलता था और कैसी थी न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान की, उसका अंदाजा लगाइए। एक बार चंद्रगुप्त के राज्य में दो महिलाओं में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का हुआ? एक बच्चा था, दो महिलाएं थीं। एक महिला कहती थी मेरा बेटा, दूसरी महिला कहती थी मेरा बेटा। यह मुकदमा राजा के दरबार में गया। चंद्रगुप्त ने अपनी जुडिशियल काउंसिल बुलाई और जुडिशियल काउंसिल के सामने यह मुकदमा पेश हुआ। उस जमाने में क्या होता था, वकील नहीं होते थे, हर व्यक्ति को अपना मुकदमा पेश करना होता था। वादी खुद अपनी बात कहता था, प्रतिवादी अपनी बात कहता था। यह वकीलों का सिस्टम तो अंग्रेज लेकर आए इस देश में हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटने के लिए। आप जरा सोचिए कि मुकदमा आपको लड़ना, वकील क्या करेगा? अन्याय आपके साथ हुआ, वकील क्या करेगा? आपको चूसेगा जोंक की तरह से। यह अंग्रेजों की व्यवस्था है। हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था में वकील की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? ऐसा माना जाता है कि वकील इंटरप्रिटेशन करता। और मैं आपको मेरा उदाहरण दे दूं, मेरे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इतने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लगे हुए हैं कि एक भी वकील मेरे साथ आता नहीं। वो कहता है कि राजीव भाई आप जितना अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो हम कभी नहीं कर सकते उसको कोर्ट में। और एक बार मुझे खुद कहा कोर्ट में एक न्यायाधीश ने, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग है, उन्होंने कहा कि तुम क्या बेवकूफी के काम कर रहे हो, तुम पहले किसी वकील को समझाओगे, अपना पूरा केस बताओगे, हो सकता है 50% समझ में आए, हो सकता है 25% उसको समझ में आए, फिर वो मुझको समझाएगा, तो तुम सीधा मुझको क्यों नहीं समझा देते अपना केस? ये बिचारिया कहां चला रहे हो? मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, हम यही तो कर रहे हैं। हम सीधे हमारा केस क्यों नहीं समझा सकते कोर्ट में जाके? कहां तो ये वकीलों की दलाली बीच में है। और महात्मा गांधी इस प्रोफेशन को सबसे घटिया मानते थे, सबसे रद्दी मानते थे। वो कहते थे कि हिंदुस्तान में वकीलों की जमात जल्दी जल्दी खत्म कर दी जाए, उतना ही अच्छा देश के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ नहीं करते, दलाली खाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, सत्य को गलत सिद्ध कर देते हैं, गलत को सत्य सिद्ध कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब बताइए कि जो आदमी सही को गलत और गलत को सही सिद्ध कर रहा है, वो आपको न्याय कैसे दिलवा सकता है? वो तो धंधा कर रहा है अपना। और हम फंस गए हैं ऐसे चंगुलों में। पहले तो मैं कहता था कि अंग्रेजी लूटने वाले थे, फिर ये अंग्रेज एक और जमात खड़ी कर गए हमको लूटने के लिए। तो चंद्रगुप्त के जमाने में न वकील की जरूरत होती, वादी अपनी बात कहता था, प्रतिवादी अपनी बात कहता था। और वही न्याय की सबसे अच्छी व्यवस्था है, ये जान लीजिए। जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए और जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, वो जितने अच्छे से अपनी बात कह सकता है, उतने अच्छे से कोई दूसरा वकील नहीं कह सकता। जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, जो दर्द उसके दिल में होगा अपनी बात कहने के लिए, वो कभी वकील नहीं कहेगा। ठंडे दिल दिमाग से वो कहता रहेगा, जैसे रोबोट मशीन होती है। आदमी के रिश्ते रोबोट मशीन जैसे नहीं होते हैं, उसमें संवेदनाएं होती हैं, गर्माहट होती है। लेकिन हिंदुस्तान का सत्यानाश किया अंग्रेजों ने, ये वकीलों की जमात खड़ी करके। और वो वकीलों की जमात क्यों खड़ी की? क्योंकि उनको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कराने थे। तो वो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की व्यवस्था ऐसी है जो खून पीती है हमारा, कभी न्याय नहीं मिलता। और ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप समझिए कि हिंदुस्तानी न्याय पद्धति कैसी थी, कितनी मजबूत थी। तो जब दो महिलाओं को खड़ा कर दिया कोर्ट में, राजा ने कहा कि तुम सिद्ध करो कि यह बच्चा तुम्हारा। एक महिला खड़ी हो गई, उसने सिद्ध कर दिया बच्चा उसका। फिर दूसरी महिला को कहा कि अब तुम सिद्ध कर दो कि यह बच्चा तुम्हारा। दूसरी भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया। राजा धर्म संकट में पड़ गया कि दोनों कहती हैं कि बच्चा उसका है, सच्चाई क्या है, असली मां कौन है, नकली मां कौन है? तो असली मां और नकली मां का पता लगाने के लिए उसने क्या किया, एक तलवार मंगाई और कहा कि बच्चे को आधा आधा काट दो, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही बच्चे को काटने के लिए उसने तलवार उठाई, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और उसने कहा नहीं नहीं बच्चे को काटो मत, चाहो तो पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया कि असली मां अपनी आंखों के सामने किसी बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने क्या किया, नकली मां से बच्चा छीनकर असली मां को दे दिया। और इस पूरे मुकदमे का फैसला 3 मिनट के अंदर हो गया। अब आप इसी मुकदमे को लेकर चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, या चले जाइए हाई कोर्ट में, या चले जाइए लोअर कोर्ट में, तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि कम से कम 20 साल लग जाएंगे यह तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है कौन नकली मां है। और हो सकता है असली मां भी मर जाए, नकली मां भी मर जाए, मुकदमा चलता रहेगा। तो आप अंदाजा करिए कि जब अंग्रेज नहीं थे तो हमारी न्याय पद्धति कैसी थी। 3 मिनट के अंदर न्याय मिलता था। और आप एक दूसरी बात भी जानते हैं, अगर आपको समय पर न्याय नहीं मिलता तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। और हिंदुस्तान के सभी कोर्ट्स में इस समय 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं जिनमें न्याय नहीं हो पा रहा। 3 करोड़। और वो 3 करोड़ मुकदमे अगर पेंडिंग है तो हिंदुस्तान के 3 करोड़ परिवारों को न्याय की उम्मीद है। पता नहीं कितने साल से पेंडिंग है और वो बेचारे न्याय की उम्मीद में कब इस दुनिया से चले जाएंगे, पता नहीं कब उनको न्याय मिलेगा। ये अंग्रेजों की न्याय पद्धति, ये न्याय नहीं करती, अन्याय करती। और इस पद्धति में क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनिए, न्याय एक अलग चीज है, कानून के आधार पर फैसला एक दूसरी चीज है। हिंदुस्तान के जितने न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों में न्याय नहीं होता, कानून के आधार पर फैसले होते हैं। मैं जब भी जाता हूं, हम तो अक्सर जाते रहते हैं कोर्ट्स में, हमेशा मुझे एक ही बात सुनाई देती है कि यहां पर कानून के आधार पर फैसले किए जाते हैं और अगर कानून गलत है तो फैसले गलत होंगे, और अगर कानून गलत है तो फैसले गलत होंगे। तो न्याय कहां मिला मुझे, अन्याय ही हुआ मेरे ऊपर। तो जिन स्थानों पर कानून के आधार पर फैसले होते हो, न्याय नहीं मिलता हो, उन स्थानों को हम न्यायालय कैसे कहें? कैसे कह सकते हैं कि हम ये न्यायालय हैं? हम उनको कायदालय तो कह सकते हैं, कानूनालय तो कह सकते हैं, वो न्यायालय कैसे हैं? हर जगह लिखा रहता है जिला सत्र न्यायालय, फलाना न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। न्यायालय है कहां? वो न्याय मिल पा रहा है मुझे? मेरे तो मुकदमे में कानून के आधार पर फैसला हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो कानून सही ही हो, और अगर कानून गलत है तो अन्याय होगा मेरे साथ। तो उनको हम न्यायालय क्यों कहें? इनका नाम बदल देना चाहिए सबका, कायदालय कर देना चाहिए, कानूनालय कर देना चाहिए। कैसे मानूं कि न्याय मिलेगा मुझे? और न्याय इसलिए नहीं मिलेगा कि कानून गलत है। कानून गलत कैसे है? मैं आपको एक उदाहरण दूं। हिंदुस्तान में एक कानून है। क्या कानून है? जन्म लेने से पहले किसी बच्चे को मारिए तो एबॉर्शन, और जन्म लेने के बाद मारिए तो हत्या। देखिए जरा, जन्म लेने के पहले किसी बच्चे को मार दिया जाए तो वो है एबॉर्शन, मात्र गर्भपात, और जन्म लेने के बाद मारा जाए तो वो है हत्या। हत्या करने वाले को जेल होती है, एबॉर्शन कराने वाले को डॉक्टरी का दर्जा मिलता है, वो डॉक्टर है, वो हत्यारा नहीं है क्या? और ये अधिकार उसको किसने दिया है कि वो एक आने वाले जीव की हत्या करे? आप तो जानते हैं भ्रूण जैसे ही एक डेढ़ महीने का होता है उसमें जान पड़ जाती है, सारे डॉक्टर्स कहते हैं इस बात को। तो वो एक जीवित बच्चा है, ये एक अलग बात है कि वो जीवन से थोड़ा बाहर है, अंदर है कहीं, तो उसको हम मार दें तो वो एबॉर्शन होगा, और बाहर आ जाए तब मारे तो हत्या होगी। हत्या करेंगे तो फांसी हो जाएगी, एबॉर्शन कराएंगे तो डिग्री मिलती है डॉक्टरी की, क्लिनिक चलता है, धंधा चलता है, एबॉर्शन कराने वालों का धंधा चलता है, हत्या करने वालों को जेल मिलती है। कौन सा कानून है ये? न्याय कहां मिल रहा है इसमें? ऐसे ये कानून है इस देश में कि 16 साल से ऊपर की गाय है, 16 साल से ऊपर का बैल है तो उसको काट देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि कानून है। क्यों कर देना चाहिए? तो कानून बनाने वालों ने तर्क यह दिया कि 16 साल से ऊपर की गाय और बैल जो होती है वो बूढ़ी हो जाती है, तो बूढ़ी हो जाती है तो सिर्फ चारा खाती है, दूध नहीं देती, किसी काम की नहीं होती, इसलिए उसको काट देना चाहिए। तो ये तर्क तो यहां भी लागू होता है कि 60 साल से ऊपर के मां बाप किसी काम के नहीं होते, उनको भी काट देना चाहिए। फिर तो तर्क की को तो सीमा नहीं होती ना। जो तर्क एक जगह लागू हो रहा है वो दूसरी जगह भी हो सकता है। तो क्या हम यह तर्क मान लेंगे कि हमारे मां बाप क्योंकि बूढ़े हो गए इसलिए उनका कत्ल कर देना चाहिए, किसी काम के नहीं है? गाय को तो हम मां मानते हैं ना, क्योंकि पोषण करती है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का, तो उसको हम कत्ल करवाने को तैयार हैं क्योंकि वो 16 साल से ऊपर की हो गई है। कानून है, इसमें न्याय कहां है? और जहां सिर्फ कानून है न्याय नहीं है, वो समाज सबसे ज्यादा अन्याय बर्दाश्त करने वाला है, और वही अन्याय आज हर व्यक्ति पर हो रहा है। पूछिए जो लोग कोर्ट और कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सबसे बड़ा अन्याय है लोगों के ऊपर कि एक बार अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया तो जिंदगी चली जाएगी, उसकी खेत बिक जाएगा, उसके घर बिक जाएंगे, उसके गहने बिक जाएंगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि घर बेचकर, गहने बेचकर, खेत बेचकर उसको न्याय मिल ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी। हिंदुस्तान के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग, गांव में रहने वाले बेचारे सीधे साधे लोग ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में, ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। न्याय कहां मिल रहा है? हिंदुस्तान की आजादी के सपने का क्या हुआ है फिर? और न्याय तभी मिलेगा हिंदुस्तान में जब आईपीसी खत्म किया जाएगा, न्याय तभी मिलेगा जब यह सीआरपीसी खत्म किया जाए, न्याय तभी मिलेगा जब सीपीसी खत्म किया जाएगा। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि आईपीसी खत्म हो जाएगा, सीआरपीसी खत्म हो जाएगा, सीपीसी खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? जब आईपीसी नहीं था, सीआरपीसी नहीं था, सीपीसी नहीं था, तब क्या होता था? हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं, हम बना लेंगे अपनी, और इतनी बुद्धि तो है ही हमारे पास कि हम हमारी व्यवस्था बना सकते हैं और चला सकते हैं। हिंदुस्तान के लोग इतने बुद्धिशाली हैं, कोर्ट उनको मरवा देता है। कई बार क्या होता है, दो पार्टियां झगड़ा अगर करती है, सुलह करने को तैयार है, वकील सुलह नहीं होने देता क्योंकि फीस नहीं मिलेगी उसको। कई बार ऐसा होता है। हिंदुस्तान की सरकार ने मैट्रिमोनियल केसेस के लिए कोर्ट खोल दिए हैं। मियां बीवी में कभी कभी झगड़ा हो जाता, होते ही रहते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि कई बार विचारों का मेल नहीं होता तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता, लेकिन वो मैट्रिमोनियल केसेस में हमेशा तलाक तक नौबत ले जाके पहुंचा देते हैं। वो आपस में बेचारे मिल बैठ के कभी कोई सुलह कर सकते हैं, तलाक तक पहुंच जाती है नौबत। जब से हिंदुस्तान में ये केसेस हुए हैं, मुझे तो तलाक की संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं इस देश में। जब ये नहीं था तब इस देश में कम से कम तलाक तो नहीं हुआ करते। कस्तूरबा और महात्मा गांधी का जितना झगड़ा होता था आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कभी तलाक तक नौबत नहीं पहुंची। कस्तूरबा और गांधी जी के विचारों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था, बहुत कम लोग ये बात जानते। गांधी जी ने बहुत ईमानदारी से ये बात लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में। गांधी जी कुछ मायनों में बहुत ईमानदार थे, जीवन के अंदर जो कुछ है उसको लिख दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मेरे और उसके विचार में बहुत ज्यादा मतभेद है, लेकिन कभी तलाक तक नौबत नहीं पहुंची। आज तो हम देखते हैं। तो ये अन्याय की व्यवस्था है, न्याय की नहीं है। और इसके 1001 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। इसलिए हमको एक दूसरा काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर इस समाज से करप्शन खत्म करना है तो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, तमाम टैक्सेशन के डिपार्टमेंट बंद कराने पड़ेंगे, ये कानून रद्द कराने पड़ेंगे। और हिंदुस्तान के समाज से अन्याय खत्म करना है तो आपको ये न्याय की पद्धति रद्द करवानी पड़ेगी जो अंग्रेजों के जमाने की चल रही है। और ऐसे ये तीसरी बात कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए एक और जो सबसे खतरनाक काम किया। कभी कभी एक बार मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि तुम्हारे मन में इतना गुस्सा है, इतना जहर है, तुम अंग्रेजों को कौन से दो कामों के लिए कभी माफ नहीं कर सकते, बाकी सब काम के लिए तुम चाहो तो उनको माफ कर दोगे। तो मैंने मेरे दोस्त को लिखा था, वो लंदन में रहता, उसने चिट्ठी से मुझको पूछा कि कौन से ऐसे दो काम है जिनके लिए तुम कभी अंग्रेजों को माफ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मैं अंग्रेजों को दो काम के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। पहला, एक तो उन्होंने हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को बर्बाद किया, और दूसरा उन्होंने हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति को बर्बाद किया। इन दो कामों के लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकता उनको। और ये दोनों काम एक ही व्यक्ति ने किए थे, मैकॉले ने। मैकॉले ने ही हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति बर्बाद की थी, मैकॉले ने ही हिंदुस्तान की न्याय पद्धति बर्बाद की थी। और वो मैकॉले की चलाई गई न्याय पद्धति आज तक चल रही है, मैकॉले की चलाई हुई शिक्षण पद्धति भी आज तक इस देश में चल रही है। मैकॉले ने क्या किया था, मैकॉले को भेजा गया था इंग्लैंड से बाकायदा एक मिशन पर, और वो मिशन क्या था, हिंदुस्तानी समाज को तोड़ना है, इसके लिए मैकॉले आया था। तो हिंदुस्तानी समाज को तोड़ने के लिए मैकॉले ने काफी अध्ययन किया था, और उस अध्ययन के बाद उसको जानकारी मिली कि हिंदुस्तानी समाज को तोड़ना है तो हिंदुस्तानी संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यह समाज नहीं टूटेगा। और हिंदुस्तानी संस्कृति कैसे टूटेगी, बहुत अध्ययन करने के बाद मैकॉले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हिंदुस्तानी संस्कृति जिस जगह से चलती है वो जगह तोड़ दो तो संस्कृति टूट जाएगी। तो वो जगह क्या थी, उसने कहा गुरुकुल, माने हिंदुस्तान में चलने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस, जिनको बहुत सुंदर शब्द दिया गया है गुरुकुल। गुरुकुल से ज्यादा सुंदर शब्द कोई दूसरा नहीं है, स्कूल और कॉलेज उसकी तुलना में कहीं नहीं टिकता। तो गुरुकुल चलते थे इस देश में, और कैसे गुरुकुल चलते थे बहुत कम लोगों को मालूम है। हिंदुस्तान में शिक्षण की पद्धति जितनी मजबूत रही दुनिया में शायद ही किसी देश में होगी। अंग्रेजों के आंकड़े हैं, अंग्रेजों का एक ऑफिसर था एडम स्मिथ, उसने कुछ सर्वे किया था, और सर्वे किया था हमारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, कि हिंदुस्तान के गुरुकुलों को कैसे तोड़ना है उसके लिए पहले समझना चाहिए। तो उन्होंने सर्वे किया, उस सर्वे की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 1835 के साल में हिंदुस्तान की साक्षरता का प्रतिशत 100% था। 1835 में हम 100% लिटरेट थे 1835 तक। और क्यों थे हम 100% लिटरेट, उसका उसने सबूत दिया कि हिंदुस्तान में मद्रास प्रेसिडेंसी में उसने जब सर्वे किया सबसे पहला, तो मद्रास प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान का माने एक तिहाई हिस्सा, जिसमें पूरा कर्नाटक आता था, पूरा आंध्र प्रदेश आता था, तमिलनाडु आता था, केरल आता था, और उड़ीसा का काफी बड़ा इलाका आता था। इतना पूरा हिंदुस्तान माने मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का ऑफिस था एडम स्मिथ, उसने किया सर्वे। सर्वे की रिपोर्ट क्या आई, उसने कहा कि मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर 1,47,000 गांव हैं, कुल मिलाकर पूरी प्रेसिडेंसी में। और मद्रास प्रेसिडेंसी में कुल मिलाकर 150,000 गुरुकुल हैं, ये उसका सर्वे है। आप जरा हिसाब लगाइए, हर गांव में एक गुरुकुल है, और हर गांव में एक गुरुकुल है माने हर गांव में एक स्कूल या कॉलेज है, और अगर हर गांव में एक स्कूल और कॉलेज है तो साक्षरता तो 100% होने ही वाली है। एक दूसरी बात और बता दूं आपको जो आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे भी नहीं मालूम था, जब एडम स्मिथ का सर्वे मैं निकाल के लाया लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से, तब मुझे पता चला। एडम स्मिथ ने एक दूसरी बात और लिखी आश्चर्यजनक, कि वो जो 150,000 गुरुकुल हैं उनमें से 22,000 गुरुकुल उच्च शिक्षा के स्थान हैं, माने इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, जिनको हम यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं। 22,000, एक दो नहीं, 22,000। क्या शिक्षा उसमें दी जाती है? तो वो लिख रहा है कि उनमें 18 तरह के विज्ञान शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, जिनके नाम भी हमको नहीं मालूम। क्या क्या पढ़ाते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स 1835 में पढ़ाया जाता था इस देश में, उसको संस्कृत में जो कहते थे आज उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट है एस्ट्रोफिजिक्स। दूसरा पढ़ाते थे एस्ट्रोनॉमी, तीसरा पढ़ाते थे वैदिक मैथमेटिक्स, और वैदिक मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस ऐसे हैं कि आप 3-4 सूत्र सीख लीजिए, कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसे कई फॉर्मूले। हमारी एक कोई बहन है, उसका नाम है शकुंतला देवी, तो कहा जाता है कि वो कंप्यूटर से ज्यादा तेज खेल, उनको कुछ नहीं मालूम, वैदिक मैथमेटिक्स की मास्टर है वो, बस और कुछ नहीं। तो वैदिक मैथमेटिक्स उनको इतना जबरदस्त आता है कि वो, आप उनको 1000 संख्या का मल्टीप्लीकेशन दे दीजिए, सेकंड्स में वो जवाब दे सकती हैं। वो फॉर्मूले थे वैदिक मैथमेटिक्स में, वो पढ़ाया जाता था इस देश में। क्या पढ़ाया जाता था? नीति शास्त्र, जिसको आज हम कहते हैं मॉरल एजुकेशन, एक्चुअली वो था नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में था, इसको समझिए, विज्ञान में और शास्त्र में फर्क होता, नीति विज्ञान नहीं था, माने मॉरल साइंस नहीं था, नीति शास्त्र था। ऐसे ही था विधि शास्त्र, माने लॉ का एजुकेशन, वो भी शास्त्र था। और ऐसे 18 बड़े विज्ञान पढ़ाए जाते थे, और पढ़ाया जाता था सिविल इंजीनियरिंग में ये जितनी टेक्नोलॉजी है स्ट्रक्चरिंग की, जिसको आप आर्किटेक्ट कहते हैं, हिंदुस्तान से बड़ा आर्किटेक्ट दुनिया में कहीं नहीं है, जो हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, चले जाइए किसी भी देश में। और मैंने तो यूरोप देखा है, यूरोप में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट की नकल करके बनाई गई हैं। मैं तो इस बात का क्लेम करने वाला हूं कि एक भी बिल्डिंग यूरोप में ओरिजिनल नहीं है, चर्च के जितने स्ट्रक्चर हैं वो हिंदू मंदिरों पर से नकल किए गए हैं, एक भी चर्च का स्ट्रक्चर यूरोप में ओरिजिनल नहीं है। फ्रांस का जो सबसे बड़ा चर्च माना जाता है नोत्रदाम, नोत्रदाम चर्च हिंदुस्तान के मंदिर की बिल्कुल नकल है, और नोत्रदाम चर्च के पास एक जमाने में कहते हैं शिवजी का मंदिर हुआ करता था। कभी मौका मिला तो आपसे इस विषय पर बात करने आऊंगा, हेरिटेज क्या है हमको मालूम नहीं है, वो अपना पूरा एक लेक्चर ही हो जाएगा 3 घंटे का, इसलिए मैं वो विषय में नहीं लाना चाहता। मैं सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में एजुकेशन कहता पढ़ाते थे, और 1790 तक हिंदुस्तान में सर्जरी की शिक्षा देने वाले 2000 कॉलेजेस थे, सर्जरी पढ़ाई जाती थी इस देश में, 1790 के साल की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड में सर्जरी हिंदुस्तान से गई है, 1790 में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। आप पूछेंगे मुझे कैसे पता चला, एक अंग्रेज ऑफिसर था 1790 के साल में, उसका नाम था कर्नल कूट। तो कर्नल कूट क्या हुआ था, हैदर अली से लड़ने आया था, हैदर अली से कई बार लड़ाइयां हुई हैं अंग्रेजों की, तो कर्नल कूट हैदर अली से लड़ने आया, हर बार हार के गया। आखिरी बार जब वो लड़ाई करने आया तो हैदर अली ने कहा कि अब तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बार बार आता है, बार बार लड़ता है, कभी हरा के भी तो देख, कभी नहीं हरा पाया वो हैदर अली को। तो हैदर अली ने एक बार फैसला कर लिया कि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी, उसने कहा बार बार ये चूहा बिल्ली का खेल खेलने से फायदा क्या, तो जब हारा है कर्नल कूट आखिरी युद्ध में, तो वो साल था 1790 का, तो हैदर अली ने पता है क्या किया, उसकी नाक काटी थी उसकी। और हमारे देश में उस जमाने में एक प्रथा होती थी कि नाक कटवा के आए हैं, माने बेइज्जती करके आए हैं, बेइज्जती करवा के आए। उसने मारा नहीं, नाक काटी उसकी, और कहा कि जब तुम कटी हुई नाक से वापस इंग्लैंड जाओगे तो दोबारा आने की हिम्मत नहीं करोगे। तो कटी हुई नाक को लेकर भागा कर्नल कूट घोड़े पर। हैदर अली की सीमा से जब बाहर निकला तो एक गांव में एक विद्यार्थी उसको मिला, तो उसने देखा कि नाक से खून बह रहा है और नाक कटी हुई है। तो उस विद्यार्थी ने उससे कहा कि ये कहां जा रहे हो, तो वो झूठ बोलता, कहता चोट लग गई है। तो उसने कहा ये चोट लगी हुई बात नहीं है, ये तो नाक काटी गई। लेकिन फिर भी वो विद्यार्थी इतना अच्छा है कि कर्नल कूट से कह रहा इशारे में, क्योंकि भाषा नहीं समझते, वो कह रहा है कि तुम मुझे एक डेढ़ घंटे का समय दो, मैं तुम्हारी नाक जोड़ दूंगा। तो कर्नल कूट को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर कहता है मरता क्या ना करता, खून निकल रहा है इतना। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने बच्चे ने ऑपरेशन किया है, जिसकी उम्र उस जमाने में 21 साल के आसपास की है, उस विद्यार्थी की, और डेढ़ घंटे ऑपरेशन चला है। डेढ़ घंटे ऑपरेशन चलाने के बाद उस विद्यार्थी ने कर्नल कूट को अपने घर में 3 दिन रखा, और 3 दिन के बाद उसको फ्री कर दिया कि अब तुम जा सकते हो। कर्नल कूट लौट के लंदन गया है और उसने ये पूरी घटना ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखी, और वो किताब मेरे पास है इस समय, 1790 की है। अब कितनी मुश्किल से मिली होगी वो आप मत पूछिए मुझसे, लेकिन वो है मेरे पास, और उस किताब को मैं संभाल के रखा हुआ हूं ये सिद्ध करने के लिए कि 1790 में हिंदुस्तान में प्लास्टिक सर्जरी होती थी। फिर कर्नल कूट ने क्या किया, अपने एक दोस्त को कहा है कि तुमको अगर कुछ सीखना है तो हिंदुस्तान जाओ, तुमको कुछ नहीं आता यहां पर, वो लंदन में कह रहा है। तो अपने किसी दोस्त को उसने हिंदुस्तान भेजा है, वो मद्रास में रहा है, प्रेसिडेंसी के आसपास के गांव में घूमा है, 25-30 साल उसने अध्ययन किया है, लौट के वापस गया है, तो लंदन में FRS की स्थापना की है, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की, जिसमें आज डिग्री लेने के लिए हमारे डॉक्टर भागे भागे जाते हैं। तो हिंदुस्तान में शिक्षा का तंत्र कैसा है, उसकी ये एक झलक मैं आपको दे रहा हूं। दूसरी झलक वो आज आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितने मंदिर बनाए गए हैं, जितनी इमारतें बनाई गई हैं, उनमें से एक भी इमारत गिरती नहीं। जैसे आज बनाए गए पुल 2 दिन बाद गिर जाते हैं, वो इमारत नहीं गिरती। कितने बड़े बड़े किले बने हुए हैं। मेरे गांव में जहां का मैं रहने वाला हूं, एक गढ़ी बनी हुई है, पूरा का पूरा किला मिट्टी से बना हुआ है, मड से, और आज तक नहीं गिरा है। कितने 100 साल पुराना है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आज तक नहीं गिरा है। क्या मिट्टी है, कुछ नहीं है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, और वो ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रिपरेशन ऐसा है जो खड़ी हुई है सैकड़ों साल से। कोई माई का लाल दावा करके दिखा दे कंक्रीट की बिल्डिंग जो खड़ी रह जाए 100 साल से भी ज्यादा। ये साइंस था हमारे यहां, ये हम पढ़ते थे, ये हमारे यहां पढ़ाया जाता था। हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट के बारे में तो दुनिया के तमाम दूसरे लोगों ने लिखा। वेन सांग एक चीनी यात्री है, उसने हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट के बारे में एक ही शब्द कहा है, मार्वलस, हो नहीं सकता, कल्पना की बाहर है उसके। एक फ्रांसीसी आया है, उसका नाम है बर्नियर, पियरे बर्नियर, मूल रूप से वो साइंटिस्ट है लेकिन घूमने का काम बहुत करता है। जब वो यहां आया है तो हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट के बारे में उसने जो किताब लिखी है पढ़ने लायक है, क्या विज्ञान रहा है इस देश में। बर्नियर ने एक मंदिर के बारे में लिखा, हिंदुस्तान में दक्षिण में कहीं है, अब वो जगह शायद नहीं है, हो सकता मंदिर टूट गया हो कुछ साल में। वो लिख रहा है कि मंदिर में मैं गया तो अद्भुत विज्ञान का वहां मैंने वो देखा। मंदिर में एक जगह मैं खड़ा हुआ, मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरी आवाज 3 किलोमीटर तक जा रही थी, और उसके एक कदम बाद मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरी आवाज बगल वाला नहीं सुन सकता। तो ये कोई बहुत गहरा ही साइंस होगा, ऐसे ही नहीं बनाया गया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का दरवाजा आप कभी देखने जाइए, मैं गया हूं, सूर्य निकलते ही पहली किरण भगवान के ऊपर जाती है। तो ये कोई साइंस था, कोई मजाक नहीं है, और इतना गहरा साइंस रहा होगा तब ये स्ट्रक्चर हैं जो आज भी हम देख रहे हैं। भग्नावशेष भी हमारे जो है, ध्वस्त खंडहर भी हैं जो कहानी कह रहे हैं कि कितनी बड़ी विज्ञान हमारे पास रही है। वो विज्ञान हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा था, और उस विज्ञान से हिंदुस्तान चलता था। जैसे मैंने आपसे कहा 10,000 फैक्ट्रियां थी लोहा बनाने वाली, कल्पना हो सकती है किसी को? और उस जमाने में जितना लोहा बनता था वो करीब करीब उतना ही है जितना आज बनता है इस देश में। कोई मजाक नहीं था इस देश में, बहुत गहरा विज्ञान था। हमारे यहां कपड़े को रंगने के लिए जो रंग बनाते हैं, जो नेचुरल कलर्स बनाते हैं, दुनिया में उससे बड़ा विज्ञान कहीं नहीं था। अभी भी आप जाइए कोयंबटूर के इलाके में, आपको वो सब मिल जाएगा, मैं तो देख के आया हूं। अभी भी आप जाइए मध्य प्रदेश में सरगुजा के इलाके में, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं। सरकार ने उनके हाथ बंद कर दिए हैं कानून बनाकर के, वो स्टील नहीं बना सकें, वो रॉ मटेरियल नहीं ले सकते। जापान की कंपनी रोज रॉ मटेरियल लेके जाती है, उनको रॉ मटेरियल लेने की पाबंदी है। इतना गहरा विज्ञान इस देश में रहा है और वो सब हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा था। और कितना ग्लोरियस एजुकेशन सिस्टम रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं पब्लिश करने वाला हूं, कुछ दिन के बाद आ जाएंगे आपके बीच में, तो आपको अंदाजा लगेगा कि क्या एजुकेशन सिस्टम रहा। उस एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए आया था मैकॉले, और उसने सबसे पहला काम क्या किया कि हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति को बर्बाद करना है अगर प्रैक्टिकली, तो पहले लोगों के दिमाग में इसके प्रति हीन भावना पैदा करनी पड़ेगी। तो उसने हिंदुस्तान में आकर एक मुहावरा कहना शुरू किया कि जो अंग्रेजी की पढ़ाई है वो सर्वोच्च और जो संस्कृत की पढ़ाई है वो सबसे रद्दी, ये कहना शुरू किया। और मैकॉले ये कहता था कि कोई भी गलत बात कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो, एक दिन उसका असर होता। ये उसने शुरू किया। और उसके साथ साथ उसने एक दूसरा काम और शुरू किया कि ये जितने गुरुकुल चलते हैं, उच्च शिक्षा के अध्ययन के केंद्र चलते हैं, इन एक एक चीज और माफ करिएगा ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, याद आ गई तो बता दूं, उन उच्च शिक्षा के केंद्रों में जो लोग पढ़ने जाते थे वो कौन थे? हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाली कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया कभी, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। और इसके आधार पर हिंदुस्तान के समाज में जो मारकाट हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एडम स्मिथ के आंकड़े बताते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने गुरुकुल हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 72% शूद्र हैं, 28% द्विज। द्विज समझते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं 28% और शूद्र हैं 72%। लड़कियों की क्या स्थिति है? 100% लिटरेसी है लड़कियों में, कोई भी लड़की को घर में नहीं बिठाया जाता, स्कूल जाना ही पड़ता है उसको पढ़ने। और कभी कोई लड़की की ऐसी स्थिति है कि वो स्कूल नहीं जा सकती तो गुरुकुल का अध्यापक घर आता है उसको पढ़ाने के लिए, ये सिस्टम है पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में, ये वो लिख रहा है। और वो कह रहा है कि शूद्रों का प्रतिशत इसलिए ज्यादा है पढ़ाई में क्योंकि हिंदुस्तानी समाज में वो सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं, सबसे ज्यादा स्किल्ड। जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब उन्हीं के कब्जे में है। ये शूद्र ही है जो स्टील बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो घड़े बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो बर्तन बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो कपड़ा बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो जीवन जरूरत की सारी चीजें बनाते हैं। तो जितनी टेक्नोलॉजी है वो उनके पास है। और वो खुद लिख रहा है कि सिस्टम इतना अच्छा है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर तुरंत होता, उसमें समय नहीं लगता। माने एक बाप है, उसने अपने बेटे को सिखा दिया, अब बेटा अपने बेटे को सिखा रहा, उसका बेटा अपने बेटे को सिखा रहा, माने पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती चली आ रही है। अब देखिए आज का दिमाग हमारा कितना गुलाम है, मैं ये मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं कि उस जमाने में जो आदमी किसी काम में लगा है तो पूरे परिवार के साथ लगा है। अगर कोई स्टील बना रहा है तो उसका पूरा परिवार स्टील प्रोडक्शन में लगा हुआ है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी भी है, उसकी बहन भी है, उसका भाई भी है, तो पूरा परिवार उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आज अगर आपका 14 साल का बच्चा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो कहेंगे चाइल्ड लेबर है। इस गंभीरता को समझिए कि उस समय बच्चे से लेकर बड़े तक सब इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन इतना है कि हम 33% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि 14 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ किसी काम में लगा हुआ है तो वो चाइल्ड लेबर हो गया। तो आपने क्या किया कि उसको चाइल्ड लेबर डिक्लेयर करके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली थी उसको तोड़ दिया बीच में से, और कहां ले जाके पटक दिया आपने, किसी अंग्रेजी के स्कूल में जहां वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सीखने वाला नहीं, कभी नहीं जीवन में नहीं। तो हमने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा था एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसको तोड़ दिया एक कानून बनाकर, और वही कानून हिंदुस्तान की सरकार आज भी चला रही है इस देश में चाइल्ड लेबर के नाम पर। रोज टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आता। अब आप सोचिए कि यूरोप में मैंने मेरी आंखों से देखा है 14 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं, 12 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं, तो वहां कहा जाता है कि ये सेल्फ सफिशियंट है, सेल्फ रिलायंट है। मेरे देश में 14 साल का बच्चा काम करके रोटी कमा रहा है तो कहते हैं चाइल्ड लेबर है। अमेरिका में तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई बच्चा बिना श्रम किए हुए पढ़ाई कर सकता, क्योंकि इतना महंगा है पूरा सिस्टम। यूरोप में भी यही हालत है, मैंने मेरी आंखों से देखा। रेलवे स्टेशन पर अखबार बेच रहे हैं, फिर स्कूल जा रहे हैं, फीस की व्यवस्था कर रहे हैं, सफारी कर रहे हैं कार की, पैसा मिल रहा है, फिर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहां चाइल्ड लेबर जो है, अमेरिका में शायद सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो उनको कहते हैं कि वो सेल्फ सफिशियंट है, सेल्फ रिलायंट है। मेरे देश के बच्चे काम करें तो चाइल्ड लेबर है। अब सोचिए कि यह सरकार कितनी अंग्रेजियत वाली है। मैकॉले भी ऐसे ही सोचता था, हमारी सरकार भी ऐसे ही सोचती है, और रोज आपको टेलीविजन पर विज्ञापन ऐसे ही दिखाया जाता है कि आप अत्याचार कर रहे हैं अगर 14 साल के बच्चे से काम ले रहे हैं। वहां क्या है, 14 साल का बच्चा काम कर रहा है तो आत्मनिर्भर बन रहा है, मेरे देश में वो अत्याचार घोषित कर दिया है सरकार ने। यह है मानसिक गुलामी, यह है अंग्रेजियत की गुलामी, और ऐसे ही तोड़ा था उसने हमारे देश के गुरुकुलों से चलने वाले एजुकेशन सिस्टम को। और उस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने में जो सबसे बड़ी सफलता मिली मैकॉले को, वो एक कानून के आधार पर मिली। उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसके आधार पर उसने क्या किया, यूनिवर्सिटीज बनवाई और उन यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी गई, संस्कृत से चलने वाले गुरुकुलों की मान्यता खत्म की गई, और मान्यता खत्म हो गई सरकारी दस्तावेजों में, लेकिन समाज में मान्यता खत्म नहीं हुई। तो क्या किया, अध्यापकों को मार मारकर, पीट पीट कर, गुलाम बनाकर भेज दिया लंदन। आपको शायद मालूम नहीं है, अंग्रेज एक अत्याचार करते थे, इंडेंजर्ड लेबर बनाते थे हिंदुस्तानी लोगों को, यहां से मजदूर बना के ले जाते थे, जिनको हम गुजराती में कहते थे गिरमिटिया मजदूर। गांधी जी सबसे पहला केस उन्हीं के लिए लड़ने गए थे, गिरमिटिया मजदूरों के लिए। जो गिरमिटिया मजदूर यहां से गए हैं वो पता है कौन लोग हैं, हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन थे जिनको गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए। हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड लोगों को कैसे बर्बाद किया, या तो वो ले गए मजदूर बना के और वहां जोत दिया उनको खेत में हल के साथ, खेत में जोता जाता था हल के साथ। गांधी जी जब देखने गए थे डर्बन के आश्रम में तो उनको आश्चर्य हुआ था कि आदमी खेत में हल चलाता ऐसे ही जैसे बैल के कंधे पर हल रखा होता। और दूसरा काम क्या किया था अंग्रेजों ने कि हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन को जो बनाते थे इतना बेहतरीन कपड़ा कि एक छोटे से रिंग में से पार निकल जाता था पूरा थान, ऐसे लोगों के हाथ काट दिए थे, अंगूठे काट दिए थे। यही सब किया था मैकॉले ने और मैकॉले के पहले के अधिकारियों ने, ऐसे बर्बाद किया है इस देश को। और स्किल्ड पर्सन को बर्बाद करने के लिए उसने कानून बना के लागू करवा दिया और पूरा सिस्टम उसने सत्यानाश कर दिया। फिर भी क्या था, फिर भी इस देश में जो सच्चाई है वो ये थी कि उसने यूनिवर्सिटीज चलाए, चले नहीं, कॉन्वेंट स्कूल चलाए, चले नहीं। सबसे पहले कॉन्वेंट स्कूलों को कहा जाता था फ्री स्कूल्स, चले नहीं, बंद हो गए। अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तान में कुछ 350 कॉन्वेंट स्कूल चलाने की कोशिश की, एक भी नहीं चला, थोड़े दिन चला बंद हो गया, चला फिर बंद हो गया। बाद में अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि हिंदुस्तान के कॉन्वेंट स्कूलों को चलाने के लिए जरूरी है कि जो अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको अपने बच्चों को कंपलसरी कॉन्वेंट स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। और एक दूसरा काम और किया उन्होंने, कि कुछ हिंदुस्तानी एजेंटों को खड़ा किया जो अंग्रेजी सिस्टम को इस देश में लागू करवाएं। तो एक सबसे बड़ा एजेंट मिला उनको, राजा राम मोहन राय, जिसके बारे में हमारे इतिहास में कहते हैं कितना बड़ा हीरो। सच्चाई यह है कि वो अंग्रेजों का एजेंट था। बहुत कम लोग जानते हैं और हमारे इतिहास की किताबों में बताया भी नहीं गया जानबूझकर, राजा राम मोहन राय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता के ऑफिस में क्लर्क था, सिंपल क्लर्क था। उसको तैयार किया गया था कि तुमको हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रचार करना। तो राजा राममोहन राय ने अपनी पूरी शक्ति लगा के अंग्रेजी का प्रचार करना शुरू किया था। कैसे शुरू किया? खुद राजा राममोहन राय ने ऐसा इडियट वेश धारण किया कि सिर पे पगड़ी और गले में टाई। हां, सिर पे है हिंदुस्तानी पगड़ी और गले में है टाई और नीचे है धोती। ये मैं उनके आपको तीन फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूं ऐसे राजा राममोहन राय के, कि गले में टाई, नीचे धोती, सिर पर पगड़ी। अब बताइए इससे बड़ा इडियट कोई दूसरा मिल सकता है आपको, जिसके बारे में हिंदुस्तानी इतिहास में पता नहीं क्या क्या कसीदे पढ़े गए, क्या क्या उसके बारे में नहीं लिखा गया। तो वो राजा राममोहन राय क्या करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी से तनख्वाह मिलती थी, गांव गांव गली गली घूमता था, बच्चों के मां बाप को यह समझाने का काम करता था कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजिए। एक बार का किस्सा है, वो किस्सा पता नहीं मेरी किसी कैसेट में होगा तो जरूर सुनिए। किस्सा यह है कि कलकत्ता के पास किसी गांव में ये घूम रहे हैं राजा राममोहन राय, और एक गांव में जाते हैं, गांव के लोगों की मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजो। तो गांव का एक साधारण किसान है, वो पूछता क्यों भेजें, हमारे गांव में तो गुरुकुल चलता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे गुरुकुल में बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, कॉन्वेंट में अच्छे बनेंगे। तो वो किसान पूछ रहा है कि अच्छा कैसे होगा मेरा बच्चा। तो बेचारा राजा राममोहन राय 50 तर्क दे रहा है, उस किसान की समझ में नहीं आ रहा। अचानक से राजा राममोहन राय एक बात कहता है कि देखो तुम्हारा बच्चा कॉन्वेंट में जाएगा तो टाई लगाएगा। तो वो पूछता कि ये टाई क्या होती है। अब उस किसान को क्या मालूम बेचारे को कि टाई क्या होती है, उसने जिंदगी में कभी देखी नहीं। तो राजा राममोहन राय अपने बैग से निकालकर बांध के दिखाता है गले में लगा के। तो वो कहता है कि मेरा बच्चा ठीक है ये टाई लगाएगा, लेकिन इसका करेगा क्या, क्यों लगाए ये टाई, उसका क्या करे, उसको जरूरत क्या है इसकी। उस किसान के एक भी सवाल का जवाब राजा राममोहन राय के पास नहीं है। फिर वो किसान चलते चलते जब राजा राममोहन राय जा रहा है तो उसको थोड़ी दया आई है, तो उसके मन में थोड़ी सी दया आई तो उसने बड़े प्यार से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अंग्रेज जो आप बता रहे हो मुझको, उसको तो मालूम नहीं अंग्रेज क्या है टाई का, कि आप बताते हो कि अंग्रेज टाई लगाते हैं तो उनके देश में वो टाई क्यों लगाते हैं, ये पूछ रहा है। और सहज जिज्ञासा है जो वो पूछ रहा है। तो राजा राममोहन राय का जवाब सुनिए, वो कहता है कि अंग्रेजों के देश में सर्दी बहुत पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है। और कितनी ठंडी पड़ती है कि एक साल में 6 महीने 7 महीने तक सूरज नहीं निकलता। सही बात है, बर्फ जमी रहती है। तो इतनी ठंडी पड़ती है, तो जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है उन देशों में तो वहां के लोगों को अक्सर सर्दी जुकाम होता है, तो नाक चलने लगती है। तो वो बेचारे क्या करते हैं कि जेब में से रूमाल निकाल निकाल कर पूछते रहते हैं। फिर उनको लगा कि ये रूमाल गले में क्यों नहीं लटका लें, तो नाक के भी पास रहेगा और पूछने में भी सुविधा रहेगी। ये जवाब है राजा राममोहन राय का। अब वो किसान पूछता है बहुत स्वाभाविक तरीके से कि मान लिया कि अंग्रेजों के देश में ठंडी पड़ती है, उनको सर्दी जुकाम होता रहता है, लेकिन मेरे देश में तो नहीं पड़ती ठंडी, मैं क्यों लगाऊंगी। और मैं यही कहता हूं कि वो किसान हमसे ज्यादा बुद्धिमान था, वो किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा था। हम तो इतने बेवकूफ हैं कि इतने गर्मी पड़ने वाले देश में भी 3-पीस सूट और टाई पहन के बैठते हैं एयर कंडीशनर में। क्या मतलब है उसका, हमको खुद नहीं मालूम कि क्या मतलब है इसका। अंग्रेज लगाते हैं तो लगाने दीजिए, यूरोप के लोग लगाते हैं लगाने दीजिए, अमेरिका के लोग लगाते हैं लगाने दीजिए, हम क्या कर रहे हैं उसका। तो इस तरह के कुछ किस्से हैं और राजा राममोहन राय बेचारे असफल होकर चले आए हैं। और मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेज पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक स्कूल नहीं चला पाए इस देश में कॉन्वेंट का। नहीं चल पाया, बंद हुआ। 300-350 स्कूल खोले और वो बाद में बंद हो गए, क्योंकि कोई भी मां बाप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं है। क्यों? हर मां बाप को उसके बच्चे के लिए गुरुकुल मिला हुआ है, तो उसको जरूरत ही नहीं है कॉन्वेंट में भेजने की। अब क्या हो गया है, अंग्रेज चले गए, आजादी आ गई। और मैं अक्सर लोगों से एक ही बात कहता हूं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की आत्मा हम सब में प्रवेश कर गई है। कैसे प्रवेश कर गई है? कि जो कॉन्वेंट स्कूल चले नहीं अंग्रेजों के जमाने में, वो कॉन्वेंट स्कूल आज गांव-गांव, गली-गली, घर-घर खुल गए हैं। दो कमरे का घर है, उसमें कॉन्वेंट स्कूल खोल के रखा हुआ है। और कैसे कैसे कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में। बंबई में एक कॉन्वेंट स्कूल मैंने देखा है, उसका नाम है बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। अब आप पूछिए कि बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है। कुछ दिन के बाद आपको सुनाई देगा गणपति बप्पा कॉन्वेंट स्कूल है गांव गांव गली गली में। और अब यह बीमारी शहरों से गांव में पहुंच रही है। जिसको देखो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसको देखो वो कॉन्वेंट स्कूल। और मैं दूसरी तरफ एक और देख रहा हूं कि जो मां बाप कभी कॉन्वेंट में भेजने को तैयार नहीं थे, आज वो क्या कर रहे हैं, बच्चे का जन्म लेने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाते हैं इंग्लिश में और कॉन्वेंट स्कूल, और एडमिशन करवाने के लिए 25,000 का डोनेशन भी दे आते हैं अपनी जेब से निकाल के। अब मैं लोगों से पूछता हूं कि मैकोले तो मर गया, मैकोले की आत्मा को आप अपने में धारण क्यों कर रही हुए। तो कहते हैं राजीव भाई, अगर बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, तो वो तो पीछे रह जाएगा। सबसे पहला तर्क कि हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चा पीछे रह जाएगा। तो तब इसी तर्क के आधार पर दुनिया के वो सारे देशों के बच्चे पीछे रह जाने चाहिए जहां अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, कॉन्वेंट स्कूल नहीं है। तो ऐसा एक देश है, उसका नाम है जापान। जापान में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, और जापान में एक भी स्कूल इंग्लिश मीडियम भी नहीं है, यह भी जान लीजिए। और एक और जानकारी दे दूं जो आपको आश्चर्य लगेगा, कि जापान में मेडिकल की पढ़ाई होती है जापानीज में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जापानीज में, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है जापानीज में, आर्किटेक्ट की पढ़ाई होती है जापानीज में, सब कुछ बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब जापानीज में ही पढ़ाया जाता है। तब तो जापान को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, सबसे पीछे रहना चाहिए था, क्योंकि आप मानते हैं कि बिना अंग्रेजी पढ़े बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, तो जापान तो पूरा का पूरा डूब जाना चाहिए था। लेकिन सच्चाई तो उल्टी है। 1950 में यह जापान डूब गया था, लेकिन आज जापान अमरीका के भी सिर पर चढ़कर बोल रहा। अमरीका की हिम्मत नहीं होती जापान से दो बातें कहने की, क्योंकि जापान शक्ति है आज उसके पास, आर्मी नहीं है। जापान के पास आर्मी नहीं है, ये जान लीजिए आप, उसके पास अपनी आर्मी नहीं है, लेकिन शक्ति इतनी है कि अमेरिका की हालत खराब होती है जापान के सामने। शक्ति किसकी है? टेक्नोलॉजी की और पैसे की। और इतना पैसा है आज जापानीज बैंकों में कि वो चाहें तो अमेरिका को खरीद के फेंक सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। कैसे हो गया? बिना अंग्रेजी के, बिना कॉन्वेंट के इतने आगे बढ़ गया जापान। तो आप क्यों बेवकूफी कर रहे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे। दूसरा ही एक देश है फ्रांस। 1945 के सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस बर्बाद हो गया था। फ्रांस में एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, एक भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं। फ्रांस में बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता। और इतना आगे है फ्रांस यूरोप में, कितने वैज्ञानिक पैदा हुए हैं फ्रांस में जिनको नोबेल प्राइज मिला। एक देश है चीन, वहां कोई अंग्रेजी में नहीं पढ़ता बच्चा, और उच्च शिक्षा भी काफी चीनी भाषा में ही पढ़ाई जाती। चीन तो पीछे नहीं है, दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर की शक्ति अगर किसी के पास है तो वो है चीन, तो पीछे तो नहीं रह गया। मैं तो ये देख रहा हूं कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है वही आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जैसे तो सब फिसड्डी ही हैं जहां अंग्रेजी है। और आपको आज का ताजा उदाहरण दे दूं कि आप जो मानते हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, बच्चे कॉन्वेंट में नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे, हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर एपीजे कलाम। उनको इस साल भारत रत्न मिला है। और डॉक्टर एपीजे कलाम की बचपन से लेकर और माध्यमिक स्तर की पूरी शिक्षा मलयालम और तमिल में हुई है। कभी वो गए नहीं किसी कॉन्वेंट स्कूल में, कभी उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी नहीं। और जो बच्चा बचपन से लेकर और इतनी ऊंची शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़कर आया वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है इस समय। उस आदमी के दिमाग की वो देखिए कितना दिमाग है उसके पास। एक जमाने में हमारे पास मिसाइल नहीं थी 200 किलोमीटर की मार करने वाली, आज हमारे पास 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल है। उसी आदमी की बुद्धि का नतीजा है ये। हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र को उसने अमेरिका के समकक्ष बना दिया है मिसाइल की टेक्नोलॉजी में। एक भी देश ने हमको मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं दी, एक भी देश ने, एक भी मल्टीनेशनल ने हमको वो टेक्नोलॉजी नहीं दी। वो डॉक्टर कलाम की बुद्धि से निकली है, जिसने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, बचपन में कॉन्वेंट में कभी गया नहीं। तो आप क्यों ये मान के बैठे हैं कि आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे। एक दूसरी बात और कहते हैं लोग कि राजीव भाई अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। दुनिया के मुश्किल से 12 देश हैं जहां अंग्रेजी चलती है, बाकी 188 देशों में अंग्रेजी चलती नहीं। और अगर 188 देशों में जो भाषा चलती नहीं वो इंटरनेशनल कैसे है, वो तो कभी नहीं हो सकती अंतर्राष्ट्रीय। तीसरा, कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत अच्छी भाषा है। मैं कहता हूं दुनिया में अंग्रेजी से रद्दी कोई दूसरी भाषा नहीं है। आप पूछेंगे क्यों, ये अंग्रेजी ही भाषा है जिसमें काका भी अंकल, ताऊ भी अंकल, मौसा भी अंकल, मामा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, सब अंकल। और ये अंग्रेजी ही है जिसमें काकी भी आंटी, मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, फूफी भी आंटी, सब आंटी। अब आप मुझे बताइए कि काकी को मौसी बना सकते हैं या फूफा को मामा कह सकते हैं? अंग्रेजी वाले तो यही कहते हैं, सब अंकल हैं उनके यहां, सब आंटी। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी इतनी रद्दी भाषा है जिसमें अपने रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं है, और जिस भाषा में अपने रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। अंग्रेजी में शब्दों की बहुत कमी है। कुल मिलाकर अंग्रेजी में मूल शब्द हैं 2600, सिर्फ 2600। दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिया है उन्होंने, फ्रेंच से लिया सबसे ज्यादा, जर्मन से लिया, लैटिन से लिया, डच से लिया, इटालियन से लिया, दुनिया की तमाम भाषाओं से जो उधार लिए हुए शब्द हैं उन सबको मिला दिया जाए तो अंग्रेजी में कुल शब्द हैं 12000 बस। और आपको शायद मालूम नहीं है कि अंग्रेजी में कुल मिला के 12000 शब्द हैं, मराठी में इस समय 48000 शब्द हैं। अब आप बताइए कि मराठी बड़ी है कि अंग्रेजी बड़ी है? अंग्रेजी से 4 गुने ज्यादा शब्द हैं मराठी में। गुजराती में इस समय 40000 शब्द हैं, अंग्रेजी में सिर्फ 12000 है, अंग्रेजी से 3.5 गुने ज्यादा। हिंदी में इस समय 72000 शब्द हैं, अंग्रेजी से 6 गुने ज्यादा, और संस्कृत में 1.5 लाख शब्द हैं। अंग्रेजी की बाप है संस्कृत। और आप जान लीजिए, अगर आपके बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं तो दुनिया के इतने बड़े खजाने से वो वंचित हो रहे हैं जो हमारे पास है, किसी के पास नहीं। और ये भी जान लीजिए कि अभी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक डर लग रहा है कि अंग्रेजी में काम करने वाले सब कंप्यूटर बंद हो जाएंगे सन 2000 के बाद। हां, डर लग रहा है उनको। तो बहुत वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फिर उन कंप्यूटरों को आगे चलाने के लिए हमको संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दुनिया के कई देशों में संस्कृत की एल्गोरिथम, संस्कृत के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा बन रहे हैं। जर्मनी की सरकार ने तो पूरी एक यूनिवर्सिटी बना रखी है संस्कृत पर रिसर्च करने के लिए, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है उनके यहां। और जितने संस्कृत के ग्रंथ यहां से जर्मनी में हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जर्मनी का विद्वान था मैक्स मूलर, जितना संस्कृत भाषा का अध्ययन उसने किया है शायद ही किसी विदेशी ने किया होगा। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत। ये मैक्स मूलर ने कहा, खुद जर्मन था, और इसलिए उसने संस्कृत में अध्ययन करना शुरू किया। तो आप जान लीजिए, अगर आपके बच्चे 21वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं तो उनको संस्कृत पढ़ाइए, क्योंकि 21वीं शताब्दी की भाषा होगी संस्कृत। अंग्रेजी तो डूबने जा रही है। और अंग्रेजी इसलिए भी डूबने जा रही है कि जिन देशों की भाषा है अंग्रेजी, वो देश डूबने जा रहे हैं। सबसे बड़ा देश है अंग्रेजी वाला इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, ब्रिटेन डूबने जा रहा है। कैसे? ब्रिटेन में इस समय इतनी भयंकर क्राइसिस है कि पीने का पानी नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन में पीने का पानी शराब से महंगा, शराब से महंगा है पीने का पानी, है नहीं पीने का पानी। तो वहां क्या हो रहा है, टॉयलेट के पानी को 7-7 बार रिसाइकिल करके पीना पड़ता है। ये हालत है उनके देश की। और वहां के वैज्ञानिकों में आजकल एक बहस छिड़ी हुई है कि हमारे पास अरबों डॉलर है और उस अरबों डॉलर से हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना पाए आज तक कि समुद्र के पानी को मीठा बना दे, नहीं कर पाए आज तक, असफल रहे। और जिस देश में पानी नहीं रहता उसकी सभ्यता नष्ट होती है सबसे पहले, जान लीजिए आप। दुनिया की वो सारी सभ्यताएं नष्ट हुई हैं जहां पानी नहीं रहा। हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमारे यहां पानी रहा इसलिए हस्ती हमारी है। और हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता पानी पर टिकी हुई सभ्यता, माने नदियों के किनारे विकसित हुई है। हिंदुस्तान की पूरी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यता। और हिंदुस्तान के हर वो शहर बड़े माने जाते हैं जो किसी नदी के किनारे हैं, प्रयागराज, नासिक, कोई भी शहर ले लीजिए जो हिंदुस्तान के पुराने ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है, बनारस, काशी, सब नदियों के किनारे विकसित हुए शहर, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोई भी नाम ले लीजिए। तो हिंदुस्तानी सभ्यता तो ये बड़ी सभ्यता इसलिए है कि नदियों के किनारे विकसित हुई है, माने पानी रहा है पानी के किनारे। अब ब्रिटेन में पानी ही खत्म हो गया, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। और चूंकि ग्राउंड वाटर खत्म हो गया इसलिए टॉयलेट के पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है रिसाइकिल करके। ऐसे हालत है उनके, डूबने जा रहे हैं वो। और एक दूसरी बात मैं अमेरिका के बारे में भी कह रहा हूं, अगले 2-3 साल में मैं ऐसा कहता हूं कि नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा है। इस बात को समझिए, कुछ गंभीर सी बात है। प्रकृति पर इतना अत्याचार किया है अमेरिका वालों ने, यूरोप वालों ने, कि प्रकृति अब इनको सबक सिखाने जा रही है और इसका डर उनको लग रहा है। क्या डर लग रहा है? अभी कुछ दिन पहले जापान में एक सम्मेलन हुआ था 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, वो शहर का नाम है क्योटो। क्योटो में दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और अंग्रेजी वाले देशों के सबसे ज्यादा वैज्ञानिक थे। क्या चिंता करने के लिए कि हम सब मरने वाले हैं, ये कह रहे थे। कैसे मरने वाले हैं? इन देशों ने प्रकृति पर क्या अत्याचार किए हैं, इन्होंने अपने सभ्यता के लिए, अपने को स्मार्ट बनाने के लिए, अपने को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है जंगलों का। और जंगल इन्होंने क्यों काटे हैं? टॉयलेट पेपर बनाने के लिए। आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि हम हिंदुस्तानी कितने ऊंचे हैं और यूरोप अमेरिका वाले कितने नीचे हैं। हम कभी भी टॉयलेट में पेपर इस्तेमाल नहीं करते, हमारे यहां तो पानी इस्तेमाल करने की परंपरा है, उनके यहां हमेशा टॉयलेट में पेपर ही इस्तेमाल होता है। और टॉयलेट का पेपर इस्तेमाल करने के लिए हजारों हेक्टेयर जंगल बर्बाद कर दिए उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए। अब उनको अंदाजा है कि हमने सत्यानाश किया है अपना, तो अब क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान जाओ और वहां से टेक्नोलॉजी लेकर आओ। किसकी? लोटे की टेक्नोलॉजी लेकर आओ। इसको आप मजाक में मत लीजिए, यह मैं बहुत गंभीर बात आपसे कह रहा हूं। यह हमारा ही देश है, जो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। इनके पास नहीं है, वो जानते ही नहीं कि पानी का क्या इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट में, वो जानते नहीं, उनकी प्रॉब्लम है ये। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका डेलीगेशन अब हिंदुस्तान आ रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान से लोटे एक्सपोर्ट करने का सबसे बड़ा बिजनेस अब शुरू होने वाला है। वैसे ही एक दूसरी प्रॉब्लम है उनके यहां। उन्होंने क्या किया कि तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर एयर कंडीशनर बनाए, रेफ्रिजरेटर्स बनाए, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया और तमाम उल्टे सीधे काम किए। अब उससे क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस निकले जिसने प्रदूषण किया पर्यावरण में, और प्रदूषण इतना हो गया है पर्यावरण में उनके यहां कि ओजोन में डिप्लीशन होना शुरू हो गया। अब ओजोन में अगर डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेजेस आएंगे जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब वहां खतरा जानते हैं क्या हो गया, खतरा यह हो गया है कि पहले ही टेम्परेचर बहुत बढ़ गया पिछले 10-15 सालों में। अब अगर और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या होगा, नॉर्थ पोल पर जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी, और वो बर्फ अगर पिघलेगी और 1 मीटर वाटर लेवल इंक्रीज किया समुद्र में तो सबसे पहले कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबेगा उसमें, ये जान लीजिए। इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं आजकल, कह रहे हैं कि अब बचने के लिए कोई रास्ता बताओ, न्यूयॉर्क डूबेगा, कैलिफोर्निया डूबेगा। लेकिन मुझे जो दूसरा दुख है और डर है वो ये कि अत्याचार किया है इन्होंने और उसमें बेचारे मारे जाएंगे कई गरीब देश। अगर अमेरिका का कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क डूबा तो बांग्लादेश भी डूब जाएगा, श्रीलंका भी डूब सकता है। ऐसे 70-80 देश हैं गरीब जिन्होंने कुछ नहीं किया, बेचारे एकदम इनोसेंट हैं, वो डूबेंगे क्योंकि ये अमरीकी और यूरोपीय लोगों ने अत्याचार किया है प्रकृति के ऊपर। और मैं तो मानता हूं कि प्रकृति के ऊपर तुम अत्याचार करो उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद प्रकृति खुद बदला ले लेती है। इसी को मैं कहता हूं कि अगले 2 साल के बाद नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा है, और इसमें क्या होगा आप देखेंगे, भयंकर बाढ़ें आएंगी, आप देखेंगे भयंकर तूफान आएंगे, आप देखेंगे कि भयंकर टेक्टोनिक डेवलपमेंट होंगे, भूकंप आएंगे, और ऐसे ऐसे काम होंगे जिनको आप कल्पना नहीं कर सकते। और हो सकता है अमेरिका यूरोप की 1/3 आबादी उसमें खत्म हो जाए, ये इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसके लिए वो मिले थे अभी क्योटो में कि क्या करें अब, तो उनमें जितने वैज्ञानिक थे नोबल लॉरिएट जो आए उनमें से सबने एक ही बात कही कि हमने तो सत्यानाश कर लिया अपना, अब दुनिया में एक ही देश है जो हमको दिशा दे सकता है, वो है हिंदुस्तान। तो एक वैज्ञानिक ने पता है क्या कहा, वो संस्कृत जानता, उसने कहा कि हिंदुस्तान से दिशा मिलेगी। क्यों? तो उसने एक श्लोक पढ़ के सुनाया जिसको मैं अक्सर हर जगह कहता हूं कि हिंदुस्तान ही है जहां पर ये फिलॉसफी है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां वृद्ध कस्य सिद्धनम। माने जो कुछ इस चराचर जगत में है वो सब त्याग पूर्वक भोग करने के लिए है, माने लिमिटलेस कंजम्पशन नहीं कर सकते, कंजम्पशन को लिमिटेड करना पड़ेगा, उपभोग को कम करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि ये सीखना हो तो हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि तरक्की क्या है और बर्बादी क्या है। हमने माना कि तरक्की वो है जो अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि बर्बादी के कगार पर वो पहुंच गए। तरक्की का माने ये होता है कि आप अपने जीवन में चीजों का कितना कम से कम इस्तेमाल करते हैं, ये है तरक्की। और बर्बादी क्या है, आप जीवन में अपनी जरूरत से ज्यादा जितना इस्तेमाल करते हैं वो है बर्बादी। अब देखिए हमारी सिस्टम कितनी वैज्ञानिक रही है, हमारे यहां कुएं होते थे, कुएं पर वो लगाई जाती थी पुली, तो नहाना होता था तो कुएं में बाल्टी डालनी पड़ती थी और बाल्टी से पानी खींचना पड़ता था तो उसमें श्रम लगता था। तो जब हम एक बाल्टी पानी खींचते थे तो हमको एक बाल्टी पानी का दर्द पता होता था कि एक बाल्टी पानी कैसे निकाला जाता। अब विदेशी टेक्नोलॉजी आई, उसने हमारे घर में नल लगा दिया तो भल भल पानी बहता ही रहता है, हमको दर्द ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब कुएं से पानी खींचना पड़ता था तो मांसपेशियों में दर्द होता था तो एक बाल्टी पानी में नहा लेते थे, अब हमको 5-5 बाल्टी चाहिए क्योंकि दर्द नहीं है हमको कि पानी आता कहां से है। ये थी हिंदुस्तानी समाज की व्यवस्था जिसमें संयम की बात कही जाती थी, और इस समाज में जो जितना संयमी है वो उतना ही ऊंचा है। हमारे समाज में तो महान कौन रहा, और ऊंचा कौन माना गया? जिसमें शहीदी ओढ़ी या फकीरी ओढ़ी, वो महान है इस देश में। देख लीजिए आप उदाहरण उठा के, भगवान राम जब तक राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता, महल त्यागा, फकीरी ओढ़ी और 14 साल के लिए वन में चले गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। हम पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम की करते हैं, राजकुमार राम की पूजा नहीं होती इस देश में। महावीर स्वामी जब राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता, त्याग करने के लिए निकल गए जंगल में और तपस्या की भयंकर, छोड़ दिया जीवन का सारा मोह और त्याग दिया सब कुछ, तो तीर्थांकर हो गए। हम तीर्थांकर महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, ना कि राजकुमार महावीर स्वामी की। महात्मा बुद्ध राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता, महल छोड़कर तपस्या के रास्ते पर चले गए तो महात्मा हो गए, उनकी पूजा होती है। गांधी जी थ्री पीस सूट और टाई लगाते हैं तो बैरिस्टर हैं, जिस दिन सूट जला दिया, टाई जला दी, एक लंगोटी ओढ़ ली तो महात्मा गांधी हो गए। कृष्ण जब तक रहते हैं मथुरा में तो राजकुमार हैं, मथुरा छोड़ी, वृंदावन छोड़ा और पहुंच गए द्वारका में तो भगवान कृष्ण है। हम पूजा किसकी करते हैं, किसको अपना बड़ा मानते हैं? हम पूजा करते हैं जो जितना बड़ा त्यागी है उसकी। सिख धर्म में जो पूजा की जाती है जिन बड़े गुरुओं की, वो गुरु कौन है? जिन्होंने समाज के लिए अपना घर छोड़ा, जिन्होंने समाज के लिए अपनी पत्नी को कत्ल करवा दिया, समाज के लिए अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, उनकी पूजा होती है। तो इस देश में तो हमेशा से जो जितना बड़ा त्यागी, जो जितना बड़ा फकीर, वो उतना ही ऊंचा है। ये भारतीय समाज की विशेषता है। तो हमने तो त्याग और संयम को ही हिंदुस्तानी संस्कृति का बेस माना है। यूरोप और अमेरिका में क्या है, इसके ठीक उल्टा, जो जितना भोग करे वो उतना ही डेवलप्ड है। माने किसी के पास एक कार है तो कम डेवलप्ड है, दो हो जाए तो ज्यादा है, तीन हो जाए और ज्यादा, चार हो जाए और ज्यादा, और 10, 12, 50 हो जाए तो बिलियनर है। यहां तो जिसने छोड़ा है वो भगवान है, वहां तो जो भोग रहा है उसको कहते हैं कि वो। और आप देखिए, जीवन का आनंद भोगने में नहीं है, त्यागने में है। ये गंभीर बात आप समझ लीजिए तो जीवन आपका हमेशा खुशी रहेगा। जीवन के कोई भी क्षण को अनुभव करिए, आप सबसे ज्यादा आनंद कब महसूस करते हैं? जब सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। हां, सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के साथ साथ मूत्र का त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। सोचिए तो सही, यहां तो त्यागने में आनंद है, भोगने में आनंद नहीं। और भोगने की कोई सीमा नहीं होती, त्यागने की एक लिमिट है, आप अवर लिमिट तक जा सकते हैं। भोगने में आप डूबना शुरू कर दीजिए, उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए भारतीय संस्कृति हमेशा से त्यागने पर जोर देती है, भोगने पर नहीं। भोगी जो होता है, जो कामी होता है, जो विषय वासना में डूबा होता है, वो हमारे समाज में सबसे निकृष्ट माना जाता है। भारतीय समाज में जो त्यागी है वो ऊंचा माना जाता है, ऊपर उठा हुआ माना जाता है। तो यहां डेवलपमेंट की यात्रा क्या है, भोग से त्याग की तरफ, ये है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट अगर हम नहीं समझेंगे तब तक हिंदुस्तान का शायद कल्याण नहीं होने वाला। ये गंभीर बात आपको समझनी ही पड़ेगी। और जब आप डेवलपमेंट की इस परिभाषा पर कसना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान में आपको जो विकसित नजर आएंगे वो ऐसे ही लोग होंगे जिनको आज आप हिकारत से देखते हैं, वो शायद इस देश के सबसे विकसित लोग होंगे। समझिए, ये भारतीय संस्कृति है। और यह भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी आगे भी, क्योंकि अभी भी यहां त्याग की बात है। कई बार लोग मुझको कहते हैं कि राजीव भाई भारत का भविष्य क्या, बहुत अच्छा है। क्यों? अभी भी इस देश के 80% आदमी त्यागी हैं, भोगने वाले तो शुरू के 20% लोग हैं, और इन 20% लोगों को समझ में आने लगा है। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं कि जीवन की जितनी सुख सुविधाएं हमने बटोरी उतना ही ज्यादा गोलियां ले लेकर नींद आती है। जिनके पास कारें हैं, जिनके पास मोटे मोटे बैंक बैलेंसेस हैं, जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, जिनके पास ऐश्वर्य और अय्याशी के सबसे ज्यादा साधन हैं, उन्हीं को नींद नहीं आती रात में बिना स्लीपिंग पिल्स लिए हुए। और जिनके पास कुछ नहीं है, दिन में 10 रुपए की मजदूरी करते हैं, चादर तान के ठाट से सोते हैं, सवेरे आंख खुलती है और सड़क पर ही सो जाते हैं, पता ही नहीं है उनको कि गद्दे पर सोए हैं कि सड़क पर सोए। और जो आदमी 8 घंटे की सुखकर नींद नहीं ले सकता, वो दुनिया का सबसे ज्यादा फालतू व्यक्ति है। मेरे शब्दों में, जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसको भूख नहीं लग रही है ठीक से, जिसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो 12 घंटे 24 घंटे डिप्रेशन में दबा हुआ है, कौन सा विकसित आदमी है? होगा करोड़पति अपने लिए, लेकिन वो विकसित तो नहीं हो सकता। विकसित तो वो है जो सड़क पर सो गया चादर तान के ओढ़ के, अभी 8 बजे, सवेरे उठेगा 6 बजे और एकदम स्फूर्तवान होकर फिर से काम में लग जाएगा। हम सवेरे उठेंगे तो 100% डिप्रेशन के शिकार होके, और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए चाय पीनी पड़ेगी, कॉफी पीनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डिप्रेशन दूर ही नहीं होता। और वो बेचारा सवेरे उठेगा, सूखी रोटी खाएगा प्याज के साथ और खाएगा नमक और चल देगा काम पर, फिर रात को आएगा सो जाएगा। विकसित कौन है? जिंदगी का आनंद आपके पास नहीं है। और आप ये जान लीजिए, जीवन में अगर आनंद नहीं है आपके पास, तो करोड़ों रुपए की संपत्ति कोई मतलब नहीं रखती। और एक चीज दूसरी और बता दूं आपको, पैसे से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, कभी भी नहीं होता। अगर पैसों से आनंद खरीदा जाता तो जितने करोड़पति लोग हैं वो सबसे आनंद वाले होते। और ये जान लीजिए, जितने करोड़पति हैं वही साधु संतों की शरण में सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी है। अगर दुख नहीं है जीवन में तो काहे को जाते हैं साधु संत महात्माओं के चक्कर में? क्यों बनवाते हैं गंडा ताबीज? इसलिए कि दुखी हैं आप, हर तरफ से दुखी है। दुख जो है भोगने में है, सुख जो है त्यागने में है। डेवलपमेंट की परिभाषा समझ लीजिए, जितना त्याग करेंगे उतने ही विकसित होते चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि त्याग करिए चाय और कॉफी का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए पेप्सी कोला और कोका कोला का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए आप कॉलगेट क्लोजअप सिबा का फॉर हंस का, आपका डेवलपमेंट होगा। जाइए किधर, पीछे लौटिए प्रकृति की तरफ, हम बहुत दूर हो गए हैं प्रकृति से। हिंदुस्तान में विकास माने बैक टू द नेचर, भटक गए थे, आज समझ में आ रहा है तो वापस लौट आइए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप वालों को आज समझ में आ रहा है, और उनको समझ में आ रहा है तो क्या कह रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। अमरीका में उस किसान को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के गेहूं पैदा करता है, सबसे बड़ा इनाम वो उसको मिलता है। यूरोप में उन किसानों को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के खाद, बिना केमिकल खाद के दालें पैदा करते हैं, चना पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं। वो चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। दुर्भाग्य से उनके पास गाय की संख्या इतनी नहीं है जो ऑर्गेनिक मैन्योर दे सके उनको। हमारे पास है, अभी भी है, बहुत बर्बाद नहीं हुआ है अभी भी, ये देश काफी बचा हुआ है। गांव में तो अभी बहुत बचा हुआ है, बर्बादी ज्यादा आई है शहरों में, गांव अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि संस्कृति बची हुई है, भारतीयता बची हुई है। लौटिए प्रकृति की तरफ, क्यों? क्योंकि एक बात और गांठ बांध के जाइए यहां से, हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है, यहां रूल ऑफ द लॉ नहीं चलता इस देश में। यूरोप और अमेरिका में रूल ऑफ द लॉ चलता है, हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है। क्यों चलता है। देखिए, जीवन का एक एक काम रूल ऑफ द नेचर को फॉलो करने के लिए किया जाता है। मेरी मां, आपकी मां, आपके घर की माताएं बहनें तुलसी को पानी देती हैं रूल ऑफ द नेचर फॉलो करने के लिए। इस देश में मारुति कार की पूजा बेवकूफ लोग करते हैं, तुलसी की पूजा होती है इस देश में। रूल ऑफ द लॉ चलता तो मारुति को पानी देना चाहिए, उसको टीका करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। मारुति में बैठने वाली भी माताएं तुलसी को ही पानी देती हैं। माने अभी भी भारतीयता जिंदा है, मारुति में बैठने के बाद भी बर्बाद नहीं हुई है पूरी तरह से। और मैं मानता हूं कि जब तक हिंदुस्तान के घरों में तुलसी जिंदा है, हिंदुस्तान की संस्कृति जिंदा है। जिस दिन वो चली जाएगी घर में से निकल के, उस दिन ये संस्कृति पे संकट आ जाएगा। तो भारतीय संस्कृति रूल ऑफ द नेचर पर चलती है, हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं। हमारे यहां प्रकृति के खिलाफ चलना पाप माना जाता है। हिंदुस्तान में चींटी को मारना पाप है, जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रकृति में चींटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसको मारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बैलेंस टूट जाता है। इसलिए चींटी को आटा डालना पड़ता है, मारते नहीं उसको। चींटी को मारना पाप है क्योंकि संस्कृति टूटती है। यहां संस्कृति पता है किससे बनती है? हिंदुस्तान में संस्कृति बनी है प्रकृति से। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो संस्कृति टूटेगी। तो इसलिए जीवन के जितने काम इस देश में किए जाते हैं सब प्रकृति के अनुरूप किए जाते हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ भी नहीं हो सकता इस देश में। तो लौटिए प्रकृति की तरफ तो आप आएंगे संस्कृति की तरफ। तो जब मैं कहता हूं कि कॉलगेट छोड़िए, नीम का दातुन करिए, तो आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं मैं। स्वदेशी तो बना ही रहा हूं, आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं। जो टूट गया है रिश्ता प्रकृति से, उसको मैं वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे जब मैं कहता हूं कि शैंपू इस्तेमाल मत करिए, साबुन इस्तेमाल मत करिए, आंवला ले लीजिए, अरीठा ले लीजिए, शीकाकाई ले लीजिए, ये सब प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं। जब आप इनको प्रकृति से लेंगे तो प्रकृति से आपका प्रेम बढ़ेगा। जब नीम का दातुन रोज तोड़ेंगे तो नीम के पेड़ का ख्याल भी आपको आएगा। तो आप उसको बर्बाद करने की नहीं सोचेंगे और 10 नीम लगाने की सोचेंगे। माने प्रकृति की तरफ लौटिए, दूर जा रहे हैं हम। मैं जब कहता हूं कि चाय कॉफी पीना बंद करिए, क्योंकि अप्राकृतिक चीजें हैं दोनों, इसलिए जहर है उसमें, तो चाय कॉफी ना पीकर गाय का दूध पीजिए। माने प्रकृति की तरफ लौटिए। मां का दूध सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर गाय का दूध सबसे अच्छा। तो गाय के दूध को पीने के लिए लौटेंगे तो प्रकृति की तरफ लौटेंगे। और जब गाय का दूध पीना शुरू करेंगे तो आपको चिंता भी रहेगी कि गाय बचनी चाहिए। फिर हो सकता है एक दिन आप मारुति कार बेचकर चाय और गाय खरीद लाएं। और जिस दिन आप मारुति कार बेचकर चार गाय खरीद लाएंगे, उस दिन मैं आपके घर आऊंगा यह कहने के लिए कि सच में आपका डेवलपमेंट हो गया है। क्योंकि मारुति घर में खड़ी कर लेंगे, उसमें डालेंगे पेट्रोल, और पेट्रोल से निकलेगा धुआं, और वो धुआं घुसेगा फेफड़ों में और मर जाएंगे एक दिन। आप लोग किस बेवकूफी में फंसे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें हैं। ये बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्तमता, इसको समझिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिंदा रहने की कोशिश करिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको कोई दिशा देने वाला नहीं। इसलिए स्वदेशी बनिए माने प्रकृति की तरफ लौटिए, स्वदेशी बनिए माने भारतीयता की तरफ लौटिए। ये जो टूट गया है रिश्ता पिछले 500 साल में अंग्रेजों के आने के कारण, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं एक पुल का काम कर रहा हूं। बस इतनी भूमिका है, इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं। और अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाए तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा फकीर वो उतना ही ऊंचा है, ये भारतीय समाज की विशेषता है। तो हमने तो त्याग और संयम को ही हिंदुस्तानी संस्कृति का बेस माना है। यूरोप और अमेरिका में क्या है? इसके ठीक उल्टा, जो जितना भोग करे वो उतना ही डेवलप्ड है। माने किसी के पास एक कार है तो कम डेवलप्ड है, दो हो जाए तो ज्यादा है, तीन हो जाए और ज्यादा, चार हो जाए और ज्यादा, और 10 12 50 हो जाए तो बिलियनर है। यहां तो जिसने छोड़ा है वो भगवान है, वहां तो जो भोग रहा है उसको कहते हैं कि वो। और आप देखिए, जीवन का आनंद भोगने में नहीं है, त्यागने में है। ये गंभीर बात आप समझ लीजिए तो जीवन आपका हमेशा खुशी रहेगा। जीवन के कोई भी क्षण को अनुभव करिए। आप सबसे ज्यादा आनंद कब महसूस करते हैं? जब सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के साथ साथ मूत्र का त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। सोचिए तो सही, यहां तो त्यागने में आनंद है, भोगने में आनंद नहीं। और भोगने की कोई सीमा नहीं होती, त्यागने की एक लिमिट है, आप अवर लिमिट तक जा सकते हैं। भोगने में आप डूबना शुरू कर दीजिए, उसमें से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए भारतीय संस्कृति हमेशा से त्यागने पर जोर देती है, भोगने पर नहीं। भोगी जो होता है, जो कामी होता है, जो विषय वासना में डूबा होता है, वो हमारे समाज में सबसे निकृष्ट माना जाता है। भारतीय समाज में जो त्यागी है वो ऊंचा माना जाता है, ऊपर उठा हुआ माना जाता है। तो यहां डेवलपमेंट की यात्रा क्या है? भोग से त्याग की तरफ, ये है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट अगर हम नहीं समझेंगे तब तक हिंदुस्तान का शायद कल्याण नहीं होने वाला। ये गंभीर बात आपको समझनी ही पड़ेगी। और जब आप डेवलपमेंट की इस परिभाषा पर कसना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान में आपको जो विकसित नजर आएंगे वो ऐसे ही लोग होंगे जिनको आज आप हिकारत से देखते हैं, वो शायद इस देश के सबसे विकसित लोग होंगे। समझिए, ये भारतीय संस्कृति है। और ये भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी आगे भी, क्योंकि अभी भी यहां त्याग की बात है। कई बार लोग मुझको कहते हैं कि राजीव भाई, भारत का भविष्य क्या? बहुत अच्छा है। क्यों? अभी भी इस देश के 80% आदमी त्यागी हैं, भोगने वाले तो शुरू के 20% लोग हैं। और इन 20% लोगों को समझ में आने लगा है, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे। वो समझ रहे हैं कि जीवन की जितनी सुख सुविधाएं हमने बटोरी, उतना ही ज्यादा गोलियां ले लेकर नींद आती है। जिनके पास कारें हैं, जिनके पास मोटे मोटे बैंक बैलेंसेस हैं, जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, जिनके पास ऐश्वर्य और अय्याशी के सबसे ज्यादा साधन हैं, उन्हीं को नींद नहीं आती रात में बिना स्लीपिंग पिल्स लिए हुए। और जिनके पास कुछ नहीं है, दिन में 10 रुपए की मजदूरी करते हैं, चादर तान के ठाट से सोते हैं, सवेरे आंख खुलती है और सड़क पर ही सो जाते हैं, पता ही नहीं है उनको कि गद्दे पर सोए हैं कि सड़क पर सोए। और जो आदमी 8 घंटे की सुखकर नींद नहीं ले सकता, वो दुनिया का सबसे ज्यादा फालतू है, मेरे शब्दों में। जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसको भूख नहीं लग रही है ठीक से, जिसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो 12 घंटे 24 घंटे डिप्रेशन में दबा हुआ है, कौन सा विकसित आदमी है? होगा करोड़पति अपने लिए, लेकिन वो विकसित तो नहीं हो सकता। विकसित तो वो है जो सड़क पर सो गया, चादर तान के ओढ़ के, अभी 8 बजे, सवेरे उठेगा 6 बजे और एकदम स्फूर्तवान होकर फिर से काम में लग जाएगा। हम सवेरे उठेंगे तो 100% डिप्रेशन के शिकार हो गए। और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए चाय पीनी पड़ेगी, कॉफी पीनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डिप्रेशन दूर ही नहीं होता। और वो बेचारा सवेरे उठेगा, सूखी रोटी खाएगा प्याज के साथ और खाएगा नमक और चल देगा काम पर, फिर रात को आएगा सो जाएगा। विकसित कौन है? जिंदगी का आनंद आपके पास नहीं है। और आप ये जान लीजिए, जीवन में अगर आनंद नहीं है आपके पास तो करोड़ों रुपए की संपत्ति कोई मतलब नहीं रखती। और एक चीज दूसरी और बता दूं आपको, पैसे से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, कभी भी नहीं होता। अगर पैसे से आनंद खरीदा जाता तो जितने करोड़पति लोग हैं वो सबसे आनंद वाले होते। और ये जान लीजिए, जितने करोड़पति हैं वही साधु संतों की शरण में सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी हैं। अगर दुख नहीं है जीवन में तो काहे को जाते हैं साधु संत महात्माओं के चक्कर में? क्यों बंधवाते हैं गंडा ताबीज? इसलिए कि दुखी हैं आप, हर तरफ से दुखी हैं। दुख जो है भोगने में है, सुख जो है त्यागने में है। डेवलपमेंट की परिभाषा समझ लीजिए, जितना त्याग करेंगे उतने ही विकसित होते चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि त्याग करिए चाय और कॉफी का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए पेप्सी कोला और कोका कोला का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए आप कॉलगेट क्लोजअप सिबाका फॉरहंस का, आपका डेवलपमेंट होगा। जाइए किधर, पीछे लौटिए प्रकृति की तरफ, हम बहुत दूर हो गए हैं प्रकृति से। हिंदुस्तान में विकास माने बैक टू द नेचर, भटक गए थे, आप समझ में आ रहा है तो वापस लौट आइए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप वालों को आज समझ में आ रहा है, और उनको समझ में आ रहा है तो क्या कह रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। अमेरिका में उस किसान को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के गेहूं पैदा करता है, सबसे बड़ा इनाम वो उसको मिलता है। यूरोप में उन किसानों को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के खाद, बिना केमिकल खाद के दालें पैदा करते हैं, चना पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं। वो चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। दुर्भाग्य से उनके पास गाय की संख्या इतनी नहीं है जो ऑर्गेनिक मैन्योर दे सके उनको। हमारे पास है, अभी भी है, बहुत बर्बाद नहीं हुआ है अभी भी, ये देश काफी बचा हुआ है। गांव में तो अभी बहुत बचा हुआ है, बर्बादी ज्यादा आई है शहरों में, गांव अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि संस्कृति बची हुई है, भारतीयता बची हुई है। लौटिए प्रकृति की तरफ, क्यों? क्योंकि एक बात और गांठ बांध के जाइए यहां से, हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है, यहां रूल ऑफ द लॉ नहीं चलता इस देश में। यूरोप और अमेरिका में रूल ऑफ द लॉ चलता है, हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है। क्यों चलता है? देखिए, जीवन का एक एक काम रूल ऑफ द नेचर को फॉलो करने के लिए किया जाता है। मेरी मां, आपकी मां, आपके घर की माताएं बहनें तुलसी को पानी देती हैं रूल ऑफ द नेचर फॉलो करने के लिए। इस देश में मारुति कार की पूजा बेवकूफ लोग करते हैं, तुलसी की पूजा होती है इस देश में। रूल ऑफ द लॉ चलता तो मारुति को पानी देना चाहिए, उसको टीका करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। मारुति में बैठने वाली भी माताएं तुलसी को ही पानी देती हैं, माने अभी भी भारतीयता जिंदा है, मारुति में बैठने के बाद भी बर्बाद नहीं हुई है पूरी तरह से। और मैं मानता हूं कि जब तक हिंदुस्तान के घरों में तुलसी जिंदा है, हिंदुस्तान की संस्कृति जिंदा है। जिस दिन वो चली जाएगी घर में से निकल के, उस दिन ये संस्कृति पे संकट आ जाएगा। तो भारतीय संस्कृति रूल ऑफ द नेचर पर चलती है, हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं। हमारे यहां प्रकृति के खिलाफ चलना पाप माना जाता है। हिंदुस्तान में चींटी को मारना पाप है, जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रकृति में चींटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसको मारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बैलेंस टूट जाता है। इसलिए चींटी को आटा डालना पड़ता है, मारते नहीं उसको। चींटी को मारना पाप है क्योंकि संस्कृति टूटती है। यहां संस्कृति पता है किससे बनती है? हिंदुस्तान में संस्कृति बनी है प्रकृति से। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो संस्कृति टूटेगी। तो इसलिए जीवन के जितने काम इस देश में किए जाते हैं सब प्रकृति के अनुरूप किए जाते हैं, प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ भी नहीं हो सकता इस देश में। तो लौटिए प्रकृति की तरफ तो आप आएंगे संस्कृति की तरफ। तो जब मैं कहता हूं कि कॉलगेट छोड़िए, नीम का दातुन करिए, तो आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं मैं। स्वदेशी तो बना ही रहा हूं, आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं। जो टूट गया है रिश्ता प्रकृति से, उसको मैं वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे जब मैं कहता हूं कि शैंपू इस्तेमाल मत करिए, साबुन इस्तेमाल मत करिए, आंवला ले लीजिए, अरीठा ले लीजिए, शीकाकाई ले लीजिए, ये सब प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं। जब आप इनको प्रकृति से लेंगे तो प्रकृति से आपका प्रेम बढ़ेगा। जब नीम का दातुन रोज तोड़ेंगे तो नीम के पेड़ का ख्याल भी आपको आएगा, तो आप उसको बर्बाद करने की नहीं सोचेंगे और 10 नीम लगाने की सोचेंगे। माने प्रकृति की तरफ लौटिए, दूर जा रहे हैं हम। मैं जब कहता हूं कि चाय कॉफी पीना बंद करिए, क्योंकि अप्राकृतिक चीजें हैं दोनों, इसलिए जहर है उसमें, तो चाय कॉफी ना पीकर गाय का दूध पीजिए, माने प्रकृति की तरफ लौटिए। मां का दूध सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर गाय का दूध सबसे अच्छा। तो गाय के दूध को पीने के लिए लौटेंगे तो प्रकृति की तरफ लौटेंगे, और जब गाय का दूध पीना शुरू करेंगे तो आपको चिंता भी रहेगी कि गाय बचनी चाहिए, फिर हो सकता है एक दिन आप मारुति कार बेचकर चाहे और गाय खरीद लाए, और जिस दिन आप मारुति कार बेचकर चार गाय खरीद लाएंगे उस दिन मैं आपके घर आऊंगा यह कहने के लिए कि सच में आपका डेवलपमेंट हो गया है। क्योंकि मारुति घर में खड़ी कर लेंगे, उसमें डालेंगे पेट्रोल, और पेट्रोल से निकलेगा धुआं, और वो धुआं घुसेगा फेफड़ों में और मर जाएंगे एक दिन। आप लोग किस बेवकूफी में फंसे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें हैं। ये बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्तमता, इसको समझिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिंदा रहने की कोशिश करिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको कोई दिशा देने वाला नहीं। इसलिए स्वदेशी बनिए माने प्रकृति की तरफ लौटिए, स्वदेशी बनिए माने भारतीयता की तरफ लौटिए। ये जो टूट गया है रिश्ता पिछले 500 साल में अंग्रेजों के आने के कारण, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं एक पुल का काम कर रहा हूं। बस इतनी भूमिका है, इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं। और अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाए तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।